मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمرحوم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون سورة معارج کی ان آیتوں پر بہت پہلے سے درس چل رہا ہے, पाकिस्तान बनने से भी पहले से मेरा ख्याल है चल रहा है दर्श। अल्लाह ताला ने इन आयात में इंसान की एक खसलत बयान की, इंसान जल्दबाज है, बेसब्री का मुजाहरा करता है, वो चाहता है मेरी सारी ख्वाहिशात अभी पूरी हो जाएं। उसे पता भी होता है कि ये ख्वाहिश ऐसी है इसके पूरा करने में फायदा कम नुकसान ज्यादा है, लेकिन फिर भी पीछे लगता है उसके। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो जल्दबाज नहीं होते, वो अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं, उनकी अकल हमेशा उनके दिल पर गालिब रहती है। मैं बार बार एक मिसाल देता हूं ना, घोड़ा इंसान को अल्लाह ने दिया इंसान के फायदे के लिए। पैदल अगर आप सफर करेंगे बहुत टाइम लगेगा, घोड़े पे सफर करेंगे तो वो सफर बहुत आसान भी हो जाएगा, मजेदार भी होगा, उसमें आपकी एक जीनत भी है। घोड़े की पुश्त पे सवार होके जब आप ट्रेवलिंग करते हो तो उर्तुगुल जैसे नजर आते हो आप, एक अच्छा भी लगता है, रिश्तों में आसानी होगी आपके लिए। اعظم مقام في الدنا سرج صابح وخير جليس في الزمان كتاب متنبي نے کہا سب سے بہترین مقام مرد کے لیے تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت ہے اور سب سے بہترین ہم نشین کتاب ہے۔ مکر مفر مقبل مدبر معن کا جلمود صخر حتى السيل من علی۔ शायर ने कहा कि मेरा जो घोड़ा है ना, अभी मैं घोड़े के फजाइल नहीं बयान में अभी करूंगा, लेकिन बीच में घोड़ा आ गया तो थोड़ा सा उसके रिपोर्ट पेश कर दूं घोड़े के बारे में। बयान घोड़े के फजाइल पर नहीं है, मौजू चेंज हो रहा है, मैं आ रहा हूं वापस, आप बेफिक्र रहें। मिकरिन मिफरिन मुकबिलिन मुदबिरिन मान कह रहा है मेरा घोड़ा ऐसा है कि एक ही वक्त में पीछे भी पलटेगा, एक ही वक्त में आगे भी दौड़ेगा और रिवर्स भी होता है, आगे भी भागता है, दाएं भी बाएं भी एक ही टाइम पे। एक टाइम पे तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन इतनी स्पीड के साथ वो ये सारे काम करता है कि लगता है कि एक ही टाइम पे हो रहा है। और कह रहा है ऐसी उसकी दहशत है ना, जब वो दौड़ता है दुश्मन पे चढ़ता है, ऐसे लगता है कजुलमूद ये सखरिन चिटान पे, कोई चिटान का मजबूत पत्थर है जो लुढ़कता हुआ बुलंदी से नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे आता है। तो अल्लाह मियां ने हमें घोड़ा इसलिए दिया ताकि हम उसके ऊपर सवार हों, ट्रैवलिंग में आसानी हो, दुश्मन पे रोक बैठे और हमारी लाइफ में एक इंजॉयमेंट का सामान पैदा हो। ये सारी चीजें, जीनत भी इसमें है। जीनत का मतलब क्या है? देखने में आप क्या लगो अच्छे, तो ये इस्लाम में बुरा अमल नहीं है। देखो जीनत अलग चीज है, शोबाजी अलग चीज है, लोग दोनों को आपस में खल्त मल्द कर देते हैं, तभी एतराज करते हैं ये दीनदार लोग शो क्यों मार रहे हैं। हालांकि वो शो नहीं मार रहे होते, वो जीनत इख्तियार कर रहे होते हैं। शो मारना अलग चीज है, जीनत इख्तियार करना कि मैं अच्छा लगूं ये अलग चीज है, ये तो इंसान की नेचर है। दुनिया में कौन चाहता है कि मैं गंदा लगूं? अगर कोई चाह रहा है तो वो बहुत ही मैला है, कोई खानदानी महिला है जो ये चाहेगा कि मैं क्या लगूं, बुरा लगूं। तो तभी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आईने में अपनी सूरत मुबारक देखते तो क्या फरमाते, अल्लाहुम्मा हसनता खुलुकी फहसिन, अल्लाहुम्मा हसनता खल्की फहसिन खुलुकी। ए अल्लाह तूने मेरी सूरत अच्छी बनाई میرے اخلاق کو بھی اچھے کر دے، یہ ہمیں سکھانے کے لیے۔ تو یہ شکر ادا ہو رہا ہے نا کہ اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی، تو شکر اس چیز پہ کیا جاتا ہے نا جو اچھی ہوتی ہے۔ تو انسان کی فطرت ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں کیا لگوں، برا لگوں یا اچھا لگوں، اچھا لگوں۔ تو یہ نیچر ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، تبھی تو اس پہ شکر ادا ہوگا۔ اگر یہ بری چیز ہوتی اس پہ شکر تھوڑی ادا ہوتا۔ تو گھوڑے میں اللہ نے ایک زینت بھی رکھی ہے جو جائز ہے، تبھی قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهِ جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ سورہ نحل پڑھو، بڑا مزہ آتا ہے سورہ نحل پڑھنے میں، اتنا مزہ آتا ہے جب سورج شروع ہوتی ہے نا۔ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ، اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے گدھے بھی پیدا کیے، خچر بھی پیدا کیے، گھوڑے بھی پیدا کیے، اور میں نے تمہارے لیے جانور چوپائے پیدا کیے، بھیڑ بکریوں کے ریوڑ۔ اس زمانے کی زینت تو یہی چیزیں تھیں۔ تو اللہ کہتے ہیں لکم فیہ جمال، ایک جگہ فرمایا تمہارے لیے اس میں دفء ہے، گرمی سے بچنے کا سامان، سردی سے بچنے کا سامان، بھیڑوں کی کھالوں سے تم رضائیاں بناتے ہو، لحاف بناتے ہو، جیکٹیں بناتے ہو، اس سے سردی میں تمہیں کیا ملتی ہے، گرمی۔ تو یہ فائدہ سمجھ میں آتا ہے، اللہ میاں نے یہ فائدہ بیان کیا نا۔ دیکھو بھیڑ کے منہا تاکلون، فرمایا ان جانوروں کو تم کھاتے بھی ہو، گائے کو، دمبے کو، بکرے کو، اور کیا چیز تھی چوتھا جانور، اونٹ۔ تو کھانا بھی سمجھ میں آتا ہے، نعمت ہے۔ سواری علیہا وعلی الفلک تحملون، کشتیوں پہ بھی سوار ہوتے ہو، اونٹ پہ بھی سوار ہوتے ہو، سواری بھی اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ یہ ساری نعمتیں اللہ نے بیان کی، ایک الگ سے ایک اللہ نعمت بیان کرتا ہے جو بظاہر نعمت لگتی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا جب تم ان بکریوں کے ریوڑ کو لے کے صبح صبح نکلتے ہو، دمبوں کے، بکریوں کے ریوڑ کو لے کے کمانے کے لیے، اور جب واپس لوٹتے ہو، لکم فیہ جمالن، اس میں تمہارے لیے ایک زینت ہوتی ہے، اچھے لگتے ہو دیکھنے میں۔ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ دیکھو بے روزگار آدمی اچھا لگتا ہے یا روزگار والا آدمی؟ بے روزگار پڑا ہوا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں کب سونا ہے، کب اٹھنا ہے، کبھی بھی اڑ جاؤ، کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے، کہیں جانا ہے ہی نہیں، کیا خیال ہے؟ جو بے روزگار ہوتا ہے اسے کہیں جانا ہوتا ہے ٹائم پہ، اسے یہ وہ کہتا ہے کہ امی ناشتہ جلدی بنا دیں، آئی ایم گیٹنگ لیٹ کہتا ہے وہ۔ اگر کہے گا ماں کہے گی کس بات کا لیٹ ہو رہا ہے، کہ بیت الخلا جانے میں لیٹ ہو رہا ہے، تو گٹکا کھانے میں لیٹ ہو رہا ہے، بنٹے کھیلنے ہیں۔ بے روزگار کی کوئی زینت نہیں ہوتی، ایک نقصان تو ایک کما نہیں رہا وہ، اور ایک نقصان ہے زینت نہیں ہے، شو نہیں ہے اس میں ذرا سی بھی، کوئی کیا بتائے گا؟ روزگار والے آدمی کو دیکھو اللہ نے بہت بڑا احسان کیا، روزگار اللہ کی، بھلے ریڑی لگاتا ہو، ٹماٹر بیچتا ہو، کہیں چوکی داری کرتا ہو، بے شک قرآن نے اللہ کا فضل تلاش کرنا، تجارت کرنا، روزگار میسر ہونا، اس کو بہت بڑی نعمت کے طور پہ بیان کیا ہے۔ اب اللہ نے جانور بیان کیے، بھیڑ بکریاں، اونٹ، بیل، اللہ کہتے ہیں اس میں تمہارے لیے نعمت ہے، وہ نعمت کیا ہے؟ تم ان سے روزی کماتے ہو، یعنی یہ تمہارا بزنس ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ آسانی سے سمجھ میں آتی ہے یہ نعمت کیا نہیں آتی؟ ظاہر ہے بھائی، جس کی بھیڑ بکری ہیں بیچے گا بھی، اور ان کی کھال بھی بیچے گا، مشکیزے بھی بیچے گا۔ یہ بھیڑ بکریوں والے ماشاءاللہ بہت مالدار ہوتے ہیں، اگر ان کے اپنے بھیڑ بکریاں ہوں تو بہت مالدار ہوتے ہیں، دوسروں کے ہیں تو بھی بہت مالدار ہوتے ہیں، ہاں جن کے ہیں وہ غریب ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ میں نے کئی بار تجربہ کیا ہے، اپنی بکری خود پالو تو پلتی ہے، بھیڑ بکری والے کو دے دو چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے وہ۔ میں نے ایک بھیڑ بکری والے کو اپنی بکری دے دی، تھوڑی نا 6-7 مہینے کی تھی، میں نے کہا ریوڑ میں پل جائے گی، بڑی ہو جائے گی تو دے آنا۔ 6 مہینے بعد وہ اتنی کی اتنی ہی تھی، اس کے سارے جانور بڑے ہو گئے، ہماری بکری اتنی کی اتنی، پتہ نہیں کھلا نہیں رہا تھا کیا کر رہا۔ تو یہ پاکستان میں ہے مسئلہ کہ آپ اپنی چیز کو پالتے ہو تو وہ فوکس کرتے ہو، دوسرے کا مال رکھو گے تو اس کو آپ ویلیو نہیں دیتے۔ خیر سارے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ خیر تو اللہ میاں نے قرآن میں بیان کیا کہ بھیڑ بکریوں کے اون میں تمہارے لیے گرمی ہے، اس سے تم کمائی کرتے ہو، سورس آف انکم ہے۔ سورس آف انکم سے کیا ہوتا ہے؟ تمہارا گھر کا آٹا دال آتا ہے، بچوں کے اسکول کی فیسیں آتی ہیں۔ تو بھیڑ بکریوں میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو گوشت امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں، وہ تو اس زمانے کی مثال دی نا، آج کے زمانے کے لحاظ سے وہ ذرا ایڈوانس ہو گیا ہے۔ वरना भेड़ बकरियों का काम तो हमेशा से रहा है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गोश्त इन जानवरों का आज भी खाया जाता है, इसलिए ये सबसे बड़ा बिजनेस ही इन जानवरों का है, चाहे वो चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो। इन जानवरों से इंसान कभी भी मुस्तगनी नहीं हो सकता। चाइना वालों ने कुत्ते खा लिए, मगर फिर भी ज्यादा मेजोरिटी बकरे ही खाती है, मेजोरिटी कुत्ते नहीं खाती वहां पे, बकरे ही खाती। नेचुरल जो इंसान की फितरे गोश्त है वो क्या है? बकरे, दुम्बे, गाय, ऊंट, यही है। खैर, तो अब देखो अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किया कि तुम्हारे लिए इन जानवरों के गोश्त जिससे तुम खाते हो, इन पे तुम सवारी करते हो, तुम्हारे लिए इसमें जॉब है, बिजनेस है, पैसा कमाते हो। तो जितनी नेमतें थी बयान की, एक नेमत रह गई थी, बहुत अजीम नेमत, वो क्या है? जीनत। जो इंसान कमाता है ना, महीने के बाद जो तनख्वाह मिलती है वो तो है ही, खुद कमाना यानी जॉब लेस ना होना, ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है। क्यों? सुबह जब जाता है ना काम पे और शाम को वापस आता है, ये भी एक मंजर होता है देखने वाला। इससे डिप्रेशन खत्म होती है, स्ट्रेस खत्म होती है, खुशी होती है, देखने वाले को भी खुशी होती है, यार कामयाब आदमी है, सुबह जा रहा है काम पे, शाम को वापस आ रहा है। बेरोजगार आदमी को ये खुशियां नहीं मिलती। मुझे याद है जब मेरे 3 घर थे तो मेरे उस वक्त भी माशाल्लाह बच्चे बच्चे काफी थे, अल्लाह नजर से बचाए। तो मैं एक दिन निकला हूं, मैं खुद ही सारे सौदे लाए थे, ये मुलाजिम तो अब रखे हैं ना बहुत ज्यादा, जब काम बढ़ गया और फिर सिक्योरिटी के मसाइल और फिर जाके मजबूरी में हुआ, वरना मैं सारे सौदे खुद ही लेकर आता था। अब मैं सब घरों के लिए ला रहा होता था शॉपर में, अंडे, डबल रोटी, आलू, प्याज, टमाटर। तो एक बेरोजगार से मेरी मुलाकात हुई, हमारी गपशप थी, अब भी है, अल्लाह उसको रोजगार दे। उसके साथ बेचारे के साथ जुल्म किया किसी ने, अच्छा वाला रोजगार था, उसके अपने ही रिलेटिव ने छीन लिया, वो खुदकुशी करते करते बचा है, मेरा बयान सुना था तो खुदकुशी से बच गया। फिर वो तो रिश्तेदार ने ही उसको बेचारे को खा लिया था, अच्छी वाली जॉब उसकी कब्जा कर लिया था, खैर उसके बिजनेस पे। तो मैं जब आ रहा था ना ये सामान उठा के, आलू, प्याज, टमाटर, घर में पर्चियां आती थी, एक दफा तो वो पर्ची मस्जिद में निकल आई, ऐसे हर वक्त मेरी जेब में नहीं है, इस जेब में एक घर की पर्ची, सलवार की जेब में दूसरे घर की पर्ची, इधर तीसरे घर की पर्ची, और फिर सब सब मसाइल की पर्ची भी होती थी, लोग जो मसाइल पूछते हैं वो भी। तो मैं जुम्मे के बाद मसाइल बताने लगा, मैंने पर्ची निकाली, उसमें था वापसी पे 2 किलो टमाटर। भाई मैंने कहा ये क्या हो गया, तो फिर मुझे ख्याल आया ये गलत पर्ची निकल आई है। बड़े लतीफे हुए मेरे साथ। एक दफा कोई स्टेट एजेंट आया, मैंने बिजनेस शुरू किया ना प्रॉपर्टी का, जाहिर है जब खानदान बढ़ रहा है तो कुछ करना भी पड़ेगा ना, ये खाली पेड़ ही खाने बैठ के बातें करनी पड़ेंगी। तो मुझे ख्याल हुआ, प्रॉपर्टी में बहुत दफा नुकसान उठा चुका था, तो एक जानने वाले अच्छे मिल गए, अल्लाह का शुक्र है, अच्छे होते नहीं है प्रॉपर्टी में, ये बता दूं, ऐसा ना हो मेरे तजर्बे से आप बोलो कि हम भी प्रॉपर्टी में कारोबार में, हमारे तो अब इतने रिलेशन हो गए ना, अब हमें पता चल गया जाता है कौन 2 नंबर है कौन है। आपके लिए 99% चाहती है कि मरवाएगा आपको, इसलिए ये काम करना नहीं है, बहुत ही कोई हटो बच्चों किस्म का हो तो उसके साथ आप करें, लेकिन होता नहीं है भाई, बहुत इसमें नहीं, आपके लिए बहुत मुश्किल है ये, छोड़ दो, खुद करो तो एक अलग बात है, किसी को पैसा नहीं पकड़ाओ। तो वो क्या हुआ कि वो प्रॉपर्टी के ना, वो उन्होंने कहा कि वो कागजात लेकर आए फलां प्लॉट के, मैं लेकर आया, जब मैंने खोला तो वो आलू 4 किलो, प्याज इतने किलो, वो तीनों घरों के पूरी फाइल निकल आई टमाटर प्याज की। अब मैं उसको वो देख रहा है, कह रहे ये क्या है? मैंने कहा प्लॉट के कागज है। उसने कहा ये प्लॉट का कागज, आलू प्याज टमाटर। फिर मैंने कहा यार सॉरी, ये मैं गलती से गलत फाइल उठा के ले आया हूं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? खैर, तो जब मैं वो आलू प्याज टमाटर ला रहा था ना बाइक पे, इधर आलू, इधर प्याज, इधर टमाटर, इधर अंडे, तो वो बेचारा जो खुदकुशी करते हुए बचा, अल्लाह उसको खुशियां दे, मैं रुक गया सलाम करने के लिए। उसने कहा ये क्या है? मैंने कहा यार ये देखो यार, हम किस टेंशन में है यार, आलू प्याज टमाटर ये सारी चीजें मुझे ले जानी पड़ती हैं, शादी के बाद ये टेंशन है। कहता है यार खुदा की कसम, ये टेंशन उस टेंशन से अच्छी है जिस टेंशन में मैं मुब्तला हूं। ये भी एक जीनत है, घर का सौदा खरीद रहे हो, आलू प्याज टमाटर घर में ला रहे हो, क्योंकि वो इस नेमत से महरूम था, नेमत से महरूम था। कह रहे यार ये इसकी जो खुशी है वो मैं समझता हूं, घर हो, बीवी बच्चे हो, और आप उनके लिए कुछ ला रहे हो, आलू प्याज ही ला रहे हो, टमाटर ही ला रहे हो। कह रहे ये नेमत का उससे पूछो जिसके पास ये नेमत नहीं है। मुझे वाकई एहसास हुआ कि ये इतनी बड़ी अल्लाह की हम पे नेमतें हैं जिनका हमको एहसास नहीं है। और हम देखते हैं बहरिया टाउन के प्लॉट, उसके पास इतने प्लॉट हैं, फिर बहरिया टाउन ऊपर जा रहा है, मैं वहीं का वहीं, काश मैं खरीद लेता, काश मेरी किस्मत में होता, मैं खरीदता एक खोता, कभी तू सवार होता कभी मैं सवार होता। खोता समझते हो, गधे को बोलते हैं। तो काश मैं ये कर लेता। ओ भाई, इतना भी अगर तौफीक मिल रही है ना शादीशुदा आदमी को कि घर में आटा दाल आ रहा है, राशन आ रहा है, आप ला रहे हो, तो इसकी कदर उससे पूछो जो ये भी नहीं कर सकता, जो ये भी नहीं कर सकता। तो मैं बेरोजगार के वो बता रहा था आपको, आदाब बेरोजगारी के ना। बेरोजगार आदमी जब सुबह उठता है तो उसे कहीं जाने की देर नहीं हो रही होती, रोजगार वाले को टेंशन होती है, बेगम या अम्मा जो कमारे हैं वो अम्मा कह रहे होते हैं, अम्मा नाश्ता जल्दी दो, अम्मी मम्मा जल्दी से नाश्ता दो, मुझे क्या, मैं आई एम गेटिंग, इंग्लिश भी शुरू कर देता है जैसी उसकी जॉब लगती है ना, आई एम गेटिंग लेट, मैं मुझे देर हो रही है, फिर शाम को पहुंचना है। तो इसमें एक जीनत होती है। हमारा एक जानने वाला बच्चा है, उसको कहीं जॉब मिल गई, अभी तनख्वाह भी नहीं आई है, कुर्सी पे बैठा हुआ है, सेल्फियां खींच खींच के दोस्तों को सड़ाने के लिए भेज रहा है, अभी तनख्वाह मिली नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूं उसके तौर तरीके, बैठा हुआ है कुर्सी पे यूं स्टाइल में, लैपटॉप एक सामने रखा हुआ, वो भी उसका खींच के ना अपने सामने कर दिया लैपटॉप, अपनी एक इसकी शान होती है ना लैपटॉप सामने, भी ऑफिस में भाई वर्क हो रहा है बाकायदा, अपना लैपटॉप भी नहीं है, बॉस का है, वो थोड़ा सा साइड पे खिसका के सेल्फियां बना बना के। तो मुझे किसी ने बताया इसकी हरकतें देखो, मैंने कहा कोई बात नहीं, बेचारा खुश हो रहा है, खुश होने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, खुश होने दो यार, हलाल काम पे खुश हो रहा है ना, कोई नजायज पे थोड़ी, कोई चर्च का बिजनेस थोड़ी कर रहा है। तो ये इंसान को अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमत दी है, सुबह काम पे जाना, शाम को वापस आना। जामे तुर्शीद हम जाया करते थे माड़ीपुर से, 30 किलोमीटर बाइक पे जाता था मैं और 30 किलोमीटर वापस पढ़ाने के लिए। मुझे याद है इतना इंजॉय करता हुआ जाता था मैं, कि वो सुबह सुबह उठे, फजर की नमाज पढ़ी ना, हमारी क्लासें भी मदरसों में बहुत जल्दी शुरू होती हैं, पोस्तियों की तरह 12 बजे टाइम नहीं है, 9 बजे आप लोग के यहां दफ्तरों में काम शुरू होता है, मदरसों में 7:30 बजे क्लासें शुरू, उसकी बरकत बहुत होती है। सो रात को सोए, सुबह फजर पड़ी, उसके बाद नाश्ता किया और भागम भाग लगा होता था। मेरे दोस्त भी थे मेरे साथ, वो भी बाइक पे इकट्ठे जाया करते थे, तो हमने 1-5 ली हुई थी, ओ जा रहे हैं भाई सुबह सुबह ना तैयार होके, इतना एक खुशी महसूस होती थी, हालांकि कितना थके हुए पहुंचते हैं, थके हुए पहुंचा, फिर शाम को वापस आते हुए एक अलग राहत होती थी। अब शाम को कहां जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, घर जाके चाय पियेंगे तो घर वालों के साथ बैठेंगे, वालदेन के साथ, बहन भाइयों के साथ भी, बच्चों के साथ, एक अजीब इसमें अल्लाह ने लुत्फ रखा है। देखो आपकी खोपड़ी अगर सही काम कर रही है ना, दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं है, खुदा की कसम अल्लाह ने इंटरटेनमेंट की बहुत सारी चीजें रखी हैं जिनको देख के इंसान खुश हो सकता है। हमारे साथ मसला यह है कि हम गलत चीजों के आदि हो गए हैं, तो अब हमें जिन चीजों में खुशी होनी चाहिए उनमें खुशी नहीं हो रही। अब किसी को चर्च की आदत हो जाए, उसको भी रोटी में थोड़ी खुशी होगी। तो ये अल्लाह का माज़ अल्लाह कसूर नहीं है, ये इसका कसूर है कि जिस चीज में अल्लाह ने बेपनाह लज्जत रखी थी, इसने अपने आप को नशे का आदि बनाकर वो लज्जत से अपने आप को महरूम कर दिया। अब इसको तो चर्च चाहिए, हीरोइन चाहिए। इसी तरह याद रखो, अल्लाह ने हलाल में बहुत लज्जत रखी है, लेकिन जिस कमबख्त को गुनाह की, हराम की आदत पड़ जाए, बदनजरी की, फोहश फिल्मों की, जिना की, इन चीजों की आदत पड़ जाए, फिर उसके लिए नेचुरल लाइफ में दिलचस्पी खत्म। वरना जो जिना से बचता है उसको बीवी बच्चों में ही अल्लाह ने बहुत उसमें मोहब्बत रखी है, बीवी बच्चों से ही बहुत मुतमईन होता है जब वो घर पे आता है, लेकिन जो हराम खोरी की आदत पड़ जाए, गर्लफ्रेंड की आदत पड़ जाए, उसके लिए घर की नेमत नेमत नहीं, उसको घर का बाहर पसंद है, वो कहेगा कहीं नाले में सो जाऊं, घर में ना हूं। ये जो हराम कार्य है ना, इसका दुनिया में अजाब मिलता है कि अल्लाह उससे खुशियां छीन लेते हैं, तभी तो डिप्रेशन में जाते हैं। इतना कुछ हो के दौलतमंदों को देखो आप, सब कुछ हो के भी कमबख्तों के पास, जो दीनदार नहीं है उनकी बात कर रहा हूं, सब कुछ हो के भी कमबख्तों के पास सुकून नहीं है। तो खैर, तो मैं ये अर्ज कर रहा था मेरे भाई कि अल्लाह ने कुरान मजीद में जानवरों की नेमतों को बयान किया, गोश्त खाते हो, इन पे सवार होते हो, सारी नेमतें, लेकिन अल्लाह ने एक ऐसी नेमत को बयान किया जिसको आम तौर पे नेमत समझा नहीं जाता। वो नेमत क्या है, अल्लाह फरमाते हैं वलकुम फीही जमालुन हीना तुरीहून वहीना तसरहून, तुम्हारे लिए एक जीनत होती है, एक शो होती है, एक जमाल होता है, अच्छे लगते हो तुम जब इस रेवड़ को लेके सुबह घर से निकलते हो और शाम को थके हारे वापस लौटते हो। इसमें एक जीनत है तुम्हारे लिए, एक लज्जत है, एक मजा है। तो क्या रेवड़ वालों से आप पूछें, वो बताएंगे यार हम जब सुबह सुबह निकलते हैं फ्रेश होते हैं, कर क्या रहे हैं, बकरियों को हांक के ले जा रहे हैं। लेकिन कुरान उनके दिल की अक्कासी कर रहा है, उसके दिल में एक सुरूर हो रहा है उसको, और थका हारा शाम को वापस उसकी असल में एक टाइमिंग होती है। जिस जॉब की टाइमिंग ना हो ना, ये जिस काम की टाइमिंग ना हो, वो फिर सुकून नहीं देती इंसान, पता ही नहीं बॉस कब बुला ले। टाइमिंग से जो काम होते हैं ना उसमें एक जीनत होती है। तो बकरियों का रेवड़ जो चराते हैं ना उनकी टाइमिंग होती है, उनको पता है रात को बकरियां नहीं चरेंगी, सुबह सुबह लेके निकलना पड़ेगा। अगर 11 बजे लेके निकले तो बकरी का पेट कमर से चिपक जाएगा, सही है ना, उसको सुबह भूख लग रही होती है, सुबह का टाइम है। और शाम को क्या करना है, अंधेरा होने से पहले पहले वापस लौटना है। तो कुरान ने तो रेवड़ की एक मिसाल दी जो उस जमाने में आसानी से समझ में आती, वरना हर जॉब हर मुलाजमत में यही जीनत है। जब आप सुबह तैयार होके ऑफिस जा रहे हैं, ड्यूटी पे जा रहे हैं, शाम को घर आ रहे हैं, इसमें अल्लाह ने एक सुकून रखा है, अल्लाह ने इसमें एक सुरूर रखा है। ये भी अल्लाह की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत। तो इससे पता चला जीनत और जमाल, जमाल हुसन को, खूबसूरती को कहते हैं, ये कोई बुरी चीज नहीं है। और ये कि मैं मुजैन नजर आऊं, ये भी शरीयत में कोई बुरी चीज नहीं है। बुरा ये शो मारना, सामने वाले को नीचा दिखाना। जैसे आपकी जॉब लग गई तो आप अपनी सेल्फी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं, थोड़ा सा टाई को यूं किया आपने कि पढ़ा लिखा नजर आऊं और जॉब हो गई है भाई मेरी, कमाऊ पूत हो गया हूं मैं, ये बुरा नहीं है। लेकिन उसके साथ शेयर इसलिए कर रहे हो कि तू नहीं है, मैं हूं तू नहीं, तू वहीं का वहीं है, बदकिस्मत आदमी है। अब तू मुझसे बात किया कर तमीज से, कंवारे तेरे पास गुटके के पैसे नहीं होते, बेरोजगार, और मैं मोबाइल खरीद रहा हूं अभी किस्तों पे, ये देख खरीदा है। सामने वाले को जब नीचा दिखाना, उसको कमतर साबित करने की कोशिश हो, तो ये इस्लाम में क्या है, हराम। आजकल बहुत से लोग यही कर रहे होते हैं, अपनी दौलत का जो तस्करा कर रहे होते हैं, लेबल ये लगा रहे होते हैं अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, असल में सामने वाले को नीचा दिखा रहे होते हैं। अपनी औकात में रह, जरा तमीज से बात कर, सही है, आंखें नीचे, मैं छोटा आदमी नहीं हूं, ये तकब्बुर है, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते? तो अल्लाह ताला, मैं जो बात लेके चला था उसको कंप्लीट करता हूं। तो सवारी जो है ना, सवारी घोड़े की सवारी हो गई, अल्लाह ने इसमें क्या नेमतें बयान की तुम्हारी जीनत के लिए, सवारी के लिए बहुत सारे फायदे हैं। अब होगा ये कि तीन तरीके हैं आपके पास, या तो उस घोड़े की सवारी से फायदा ही ना उठाओ, आप बोलो मैं नेक आदमी हूं, मुझे दुनिया से क्या लेना देना, लिहाजा मैं पैदल ही सफर किया करूंगा, मैं सादा आदमी हूं, आदम अलैहिस्सलाम जैसे पैदल सफर किया करते थे, ये दुनिया मुझे बिल्कुल पसंद, बोलो नहीं, ये मोबाइल, ये घर, ये गाड़ी, और ये एक वो बाबा, ऐसे भी सूफी हैं दुनिया में, अमेरिका में नहीं, मैंने अमरीकियों के सूफी दिखाए थे आपको, वो क्या नाम था उस कौम का यार, एरिश करके नाम था, आयरिश करके कुछ नाम था ऐसा उनका, भूल गया मैं, मैंने ब्लॉग भी बनाया था उस पर, वो यही कहते हैं टांगे में घूमो। लेकिन बहरहाल वो बहुत सी बुराइयों से भी बचे हुए, इस वजह से ईसाइयत में वो बहुत ही एक्सट्रीम किस्म के मजहबी लोग हैं, मोबाइल से और हर चीज से दूर है। तो उनमें कुछ खूबियां भी हैं इसकी वजह से। तो एक तबका वो है मेरे भाई जो कहता है कि ये सब दुनियादारी है, मौलाना तारी जमील साहब ने सर पे बाल क्यों लगाए, अब वो तो उनका मसला है लगाए नहीं लगाए, मैं तो शरी मसला बयान कर रहा हूं भाई। अगर आपके लिए जीनत इख्तियार करना जायज है, आपको लगता है कि ये जो सर पे जो सूरत हाल है ये खतरनाक हद तक डेंजरस हो चुकी है, देखो कुछ लोगों के होती है डेंजरस, लेकिन बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं होती। मैंने जो सर पे बाल उगाए हैं ना, मेरे भी यहां बाल उगे हैं, तो क्यों उगाए हैं, मैं जब भी शीशे में अपने आप को देखता था सामने से, कभी यूं करके देखने का मुझे मौका नहीं मिला, क्योंकि यूं देख भी नहीं सकते, हम देखेंगे तो हम नीचे देखेंगे ना। हुआ यह कि मैंने एक दफा समंदर में छलांग लगाई पहाड़ी से, तो उसमें वीडियो बनाई किसी ने ऊपर से, तो जब वो YouTube पे आया ना तो मुझे ऊपर का एरिया देखने का मौका मिला पहली दफा, इतना क्लियर। तो मुझे लगा यार हालात थोड़े खतरनाक नहीं है, बहुत ज्यादा खतरनाक। पहले लोग मुझे कहते थे आपके सर के बाल गायब हो रहे हैं, थोड़े खतरनाक नहीं है, बहुत बहुत ज्यादा डेंजरस हो चुके हैं हालात। फिर मुझे फिक्र हुई कि यार इसका कुछ करना चाहिए। कोई बाल लगवा रहा है भाई उसका पर्सनल मामला है। हाँ, नाजायज काम करने की शरण इजाजत नहीं है, किसी और के बाल आप नहीं लगा सकते, ये हराम है शरीयत में, खूब समझ लो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल से मना किया है। तो जीनत इख्तियार करना, अब कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अवॉइड करेंगे, जाहिर है हम उन लोगों में से नहीं है कि घोड़ा इस्तेमाल ही नहीं करना, गधा इस्तेमाल ही नहीं करना, गाड़ी इस्तेमाल ही नहीं करनी, जहाजों में सफर करना ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बजाय इसके कि घोड़ा इस्तेमाल करते, घोड़े के ऊपर सवार होते, घोड़े को अपने ऊपर सवार कर लिया है। ये वो लोग हैं जिनका सूरह मारिज की इन आयतों में जिक्र है। घोड़े पे सवार होने के बजाय उन्होंने क्या किया, घोड़ा अपने ऊपर सवार कर लिया। घोड़े की लगाम इनके हाथ में होती, इसके बजाय अपनी लगाम किसके हाथ में पकड़ा दी, घोड़े के हाथ में। अब मैं इसको मिसाल से समझाता हूं क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ये एक साइन है, अलामत है घोड़ा, जो मैं दे रहा हूं मिसाल के तौर पर। अल्लाह ने हर शख्स के दिल में ख्वाहिशात रखी हैं, जज्बात रखे हैं, चीजों की तरफ अट्रैक्शन रखी है। अगर ये अट्रैक्शन ना होती तो इस दुनिया में ये रंगीनियां ना होती, कंपनियां बंद होती, इंसान तरक्की नहीं करता, ना शादी होती, ना बच्चे होते, ना मोहब्बतें होती, ना कमाई होती, ना फैक्ट्रियां, ना कढ़ाई वाले कुर्ते होते, ना पगड़ियों के स्टाइल होते, ना टाइयों के स्टाइल होते, ना कुर्सियों पे सेल्फियां होती। दुनिया क्या होती, कब्रिस्तान जैसी बेआबाद। तो अल्लाह ने इंसान के दिल में ख्वाहिशात के घोड़े रखे हैं ताकि ये मुख्तलिफ चीजों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करे। लेकिन अल्लाह ने कहा कि अपनी, ये घोड़ा है ना, स्पीड से आपका सफर करा देगा। अगर ख्वाहिशात नहीं होंगी ना, स्पीड से आपका सफर नहीं होगा। देखो इंसान में ख्वाहिशात ना होती अभी तरक्की कितनी होती, होती नहीं, वहीं पड़े हुए होते। जो पड़ा हुआ होता कहता है खाने को मिल जाए ठीक है, नहीं तो भूखे मर जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। जिंदा रहने की ख्वाहिश होती है, मेहनत करता है। जब बेरोजगारी के ताने सुनता है घर में, बेस्ती में महसूस होती है। वैसे तो बेरोजगारों को चंद दिनों तक महसूस होती है, उसके बाद उनको महसूस नहीं होती। जो मेरा मुशाहिदा है ना, थोड़े दिन तक महसूस होती है, वरना जो नालायक बच्चा घर में निकल आया ना, वो कुछ भी उसको कमबख्त को महसूस नहीं होगा। तो ऐसे भी लोग हैं हमारे जानने वालों में कि बच्चा बेरोजगार है, बाप उसको ताने दे दे के थक गया, कुछ कर ले नहीं करता वो। तो जब इंसान को बेइज्जती महसूस होती है, उसको इज्जत कमाने का एकदम जज्बा पैदा होता है। ये जज्बा क्या करता है, यार मैं बड़ा काम करके दिखाऊंगा। और बाज दफा कर भी लेता है। अब्बा ने एक ताना दिया तो कुछ नहीं कर सकता, उसने कहा अब्बा वो करके दिखाऊंगा जो आपके दादा ने भी नहीं करके दिखाया। दिल पे ले गया ना एकदम, और फिर ऐसे कारनामे सर अंजाम देते हैं। मुझे याद है कि वो हमारे सामने एक वाकया आया, एक लड़का था बहुत खाता था, खा खा के ना गोलगप्पा बन गया। इतना खाता था, मुंह पे उसके कंट्रोल ही नहीं था। अब शुगर का भी खतरा हो गया उसको, नजर का इतना मोटा चश्मा लग गया, और बहुत सारे मसाइल उसके साथ। एमबीए किया हुआ था उसने, तो किसी कंपनी में मैनेजमेंट की जॉब मिल गई उसको। अब्बा को आके खुशी खुशी बताया, अब्बू मैं मैनेजर बन गया, अब इतने लोग मेरे कंट्रोल में होंगे। अब्बा ने कहा कमबख्त, इतना सा मुंह तेरे कंट्रोल में नहीं है, तो इतने लोगों को तू कहां से कंट्रोल में लेकर आएगा। ये बात एकदम वो कहां ले गया, दिल पे। यार अब्बा ने बड़ी बात कही, बाज दफा नहीं नसीहतें, लेकिन कोई मौका होता है उस पर नसीहत क्लिक कर जाती है कि यार अब्बा बात तो सही कर रहे हैं, जो मुंह पे कंट्रोल ना कर सके तो वो कंपनी में इतने लोगों पे कंट्रोल कैसे करेगा। दिल पे ले गया वो। तो क्या हुआ, खाना पीना छोड़ दिया, बहुत डाइट, लो कार्ब डाइट और प्रोटीन और वर्जिश और एक्सरसाइज। जो हमने, जब किसी ने हमें वाकई, तो पूरी उनकी वो एलईडी पे तस्वीरें, सुलेमान अहमद साहब अल्लाह उनकी बरकत दे, उन्होंने पूरा ये प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन तैयार की हुई थी ना, कि ये इस बंदे का वाकया है, हमें मोटिवेट करने के लिए ना, कि देखो जो एक दफा दिल पे ले जाए ना, तो वो फिर क्या करके दिखाते हैं। तो वो फिर दिखाया कि कुछ दिनों में हैंडसम, अच्छा चश्मा भी उतर गया। हालांकि डॉक्टर कहते हैं चश्मा एक दफा लगे उतरता नहीं, लेकिन उसका वाकई चश्मा उतर गया। शुगर डॉक्टर ने कहा 10 साल तक तुमने शुगर को पीछे धकेल दिया है, 10 साल तक तो कम से कम शुगर का कोई चांस, एकदम फिट फाट। तो ये क्या था, बेइज्जती, बेइज्जती महसूस हुई ना, कमबख्त मुंह पे कंट्रोल है नहीं और बातें क्या कर रहा है, इतने बंदों को कंट्रोल करूंगा। تو انسان کے دل میں اللہ نے بہت ساری امنگیں رکھی ہیں، بے عزتی کوئی نہیں چاہتا، سب عزت چاہتے ہیں، بعض دفعہ عزت کے حصول میں اچھے کام کر لیتا ہے، بعض دفعہ کسی کی محبت میں آ کے اچھے کام کر لیتا ہے، بعض دفعہ غیرت میں آ کے اچھے کام کر لیتا ہے، بعض دفعہ کوئی لالچ ہوتی ہے اس میں آ کے بہت کچھ کر لیتا ہے۔ تو بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر یہ خواہشات ہمارے دل میں ہوں، اور جن کے دل مردہ ہو چکے ہوتے ہیں، خواہشات ہی نہیں ہیں ان کے دل میں، تو ان میں آگے بڑھنے کا جذبہ ختم، وہ مرداروں کی طرح پڑے رہتے ہیں۔ تو شریعت یہ نہیں چاہتی ہے۔ البتہ ہوتا کیا ہے کہ یہ خواہشات، یہ جذبے آپ کو ایک سمت میں اسپیڈ کے ساتھ دھکیلتے ہیں۔ وہ سلمان احمر ہی کی ایک مثال دے دوں، سلمان احمر صاحب کی بڑی اچھی مثال دی انہوں نے کہ دو چڑیائیں جو ہے نا سفر کر رہی تھیں، ایک اماں تھی اور ایک چڑیا کی بچی تھی، ماں بیٹی دونوں اکٹھے کیا کر رہے ہیں، ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ ایک جٹ طیارہ اوپر سے گزر کے گیا بہت اسپیڈ کے ساتھ، طیارہ تو جٹ طیارہ تو آپ کو پتا ہے، ایسا گیا زوم کرتا ہوا نا کہ یہ ہل گئی بیچاری، ان کے پرور بھی اکھڑ گئے۔ تو چھوٹی چڑیا نے اپنی والدہ سے پوچھا، امی ہم بھی ایک چڑیا ہیں اور یہ بھی ایک چڑیا ہے، اتنی بڑی چڑیا، تو اس میں اتنی اسپیڈ کیسے ہے؟ یعنی پر تو اس کے بھی ہمارے بھی پر ہیں، اسپیڈ میں زمین آسمان کا فرق ہے، ہم یوں یوں جا رہے ہیں اور یہ زوم کر کے ایسا تباہی مچاتی بھی چلی گئی یہ چڑیا۔ تو ڈفرنس کیا ہے ہم دونوں میں اور اس بڑی چڑیا میں؟ تو اماں نے کہا، دیکھو بیٹا فرق یہ ہے، ہماری دم میں آگ نہیں لگی ہوئی، اس کی دم میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اس کی جو دم ہے نا اس میں پیچھے دیکھ، تم نے غور کیا بیٹا اس کی دم میں کیا تھی؟ آگ لگی دم میں آگ۔ تو بعض دفعہ ہمیں موٹیویشن کی کوئی ایسی چیز کلک کر جاتی ہے کہ ہماری دم میں آگ لگ جاتی ہے، ایک دم انسان کی پروازوں پہ پروازیں۔ صحابہ کرام میں ایسے ہی تو تھا نا، احد میں کیا ہے، بہت سخت لڑائی ہو رہی ہے، تو ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں لڑوں اور شہید ہو جاؤں، کیا حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں، کیا ضمانت ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ صحابی کھجور کھا رہے تھے، تو انہیں سوچا کہ یار جنت بلا رہی ہے، کھجور ختم کرنے کا زمانہ بہت طویل ہے، 8-10 کھجوریں رہ گئی ہوں گی نا، ابے بھائی یہ تو بہت ٹائم لگے گا، جنت سامنے کھڑی ہوئی ہے، کیا اتنا لمبا ٹائم۔ ایسی موٹیویشن ملی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا، تو ان کو یقین تھا بھائی نبی نے میرے بارے میں کہہ دیا لڑکے شہید ہو گیا جنت، کھجوروں کا تھیلا پھینک دیا، نہیں بھائی اب جانا ہے لڑنا ہے، لڑے اور اتنا لڑے کہ شہید ہو گئے۔ تو بعض دفعہ ایسی موٹیویشن انسان کو ملتی ہے، اس کی پروازیں جیٹ طیارے کی طرح تیز ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سب امنگے اور جذبے جبھی ہیں جب انسان میں خواہشات کا ایک تلاطم ہو، ایک سمندر ہو، موجیں ہوں۔ اگر یہ خواہشات ہی ختم ہو گئی تو ساری زندگی، یہ زندگی کی رونقیں انسان کی ختم۔ لیکن اب ہوتا کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اسلام نے کیا کیا ہے؟ اسلام نے کہا کہ گھوڑا ہم نے تمہیں دیا ہے اس پہ سوار ہونے کے لیے، اور اس کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے، اور اس کو گھوڑے کو میسج تم دو گے اپنی عقل سے سوچ کے کہ کس سمت میں جانا ہے اور کس سمت میں نہیں جانا۔ نہیں آئی بات؟ اب آپ نے کیا کیا، گھوڑے پہ بیٹھے، اگلا پوچھ رہا ہے یار تم پیدل کیوں نہیں جا رہے؟ آپ نے کہا میں اس لیے پیدل نہیں جا رہا کہ گھوڑا گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرا دے گا، اس پہ جب بیٹھوں گا تو ایسے جیسے میری دم میں آگ لگ گئی، دم میں الگ سے مجھے آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھوڑے کی دم میں ویسے ہی آگ لگی ہوئی ہوتی ہے، ذرا سا وہ ایڑ لگاؤ نا تو ایک دم اسپیڈ مارتا ہے، تو مجھے اپنی دم میں آگ لگانے کی ضرورت اب نہیں ہے۔ اب آپ بیٹھ گئے، اب آپ سے اگلا پوچھ رہا ہے جانا کہاں ہے آپ نے، لگام کدھر کو موڑو گے؟ آپ کہو گے یار یہ میں نے ابھی تک اس بارے میں کوئی سوچا نہیں، جہاں گھوڑا کہے گا وہاں جاؤں گا میں۔ اب بتاؤ منزل پہ پہنچو گے، یہ بیڑا غرق ہو جائے گا، گھوڑا آپ کو کھائی میں گرا سکتا ہے، وہ آپ کو آپ کی منزل سے دور لے جا سکتا ہے۔ آپ نے جانا تھا آگے کی طرف ایک گھنٹہ، گھوڑے کو گھاس پیچھے نظر آئی، مڑ گیا پیچھے جا رہا ہے۔ سفر کے قریب کرنے کے بجائے یہی گھوڑا جو منزل کے قریب لے جانے کے لیے تھا آپ کو منزل سے الٹا دور کرنا شروع کر دے گا، یہی گھوڑا نعمت کے بجائے عذاب بن جائے گا۔ کیوں؟ آپ نے اس کی لگام کو کنٹرول نہیں کیا اور عقل سے فیصلہ نہیں کیا کہ کیا کام اس سے لینا ہے और क्या काम इससे नहीं लेना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ये अकल नहीं फैसला कर रही है, ये आपने घोड़े पे छोड़ दिया है। तो खूब समझ लो, अल्लाह ने हमें ख्वाहिशात का एक समंदर दिया हमारे दिल में। अल्लाह ने कहा अकल से इस ख्वाहिशात को कंट्रोल, ये ख्वाहिशात तुम्हें मोटिवेट करेंगी, ये फ्यूल का काम देंगी, ये तुम्हें बहुत सारे काम करवाएंगी तुमसे। तो अकल से फैसला करना है कि ख्वाहिशात को कहां लेके जाना है और कहां लेके नहीं जाना। हम ख्वाहिशात के घोड़े पे सवार होके ख्वाहिशात से पूछ रहे होते हैं कि बता क्या करना है आज। तो ख्वाहिश कहती है फिल्म देखनी है, फिल्म देख रहे हैं बैठे। एक आदमी ने बताया मैं इंटरनेट पे फोश फिल्में देखता था, पूरी पूरी रात गुजर जाती थी, सारा दिन सोता रहता, फिर पूरी पूरी रात। कई महीने मैंने जिंदगी का वो बेहतरीन हिस्सा जिसमें मैं कोई जबान सीख सकता था, कुछ पढ़ सकता था, कोई बिजनेस कर सकता था, सेहत बना सकता था, जिम जा सकता था, बीसियों काम मैंने इंटरनेट पर फोश फिल्मों की भेंट चढ़ा दिए। और ये एक लिबरल आदमी था, दीनदार आदमी की बात नहीं कर रहा मैं, जिसके वाकया मेरे सामने, दीनदार नहीं था ये, लिबरल सेकुलर आदमी जो मजहब को नहीं मानता था। कह रहे मैंने कहा यार मजहब में हराम हो या ना हो, कह रहे मैं मजहब को नहीं को फॉलो करता, लेकिन इससे जिंदगी का बेड़ा गरक हो रहा है। कह रहे मैंने ऐसा आजम किया कि वो काम करके दिखाया जो आज नौजवानों से, जिसको जब कहा जाता है ना फोश फिल्में दो छोड़ दो, कह रहे हमारे लिए मुमकिन नहीं है। कह रहे मैंने वो नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। मैंने कहा ऐसी की तैसी इसको मैं अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकालूंगा। वो मजहबी आदमी नहीं है कि उसको आखिरत का खौफ है, वो कह रहे यार दुनिया का बेड़ा गरक हो गया ना, जो जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा बीसियों मुफीद कामों में मैं लगा सकता हूं, पूरी पूरी रात कमर भी कुबड़ी हो जाती है, गर्दन टेढ़ी हो जाती है, सारा दिन उसी में लगे रहते हैं, फिर दिन में भी उसी के ख्यालात। कहते मैंने कहा यार मैं अपनी सलाहियतों को कहां जाया कर रहा हूं, मैं किधर मैं अपनी सलाहियतों को लगा रहा हूं। तो बाज लोगों को अल्लाह ने अकल दी होती है, उनको पता होता है कि भाई ख्वाहिशात, अकल बताएगी कौन सी ख्वाहिश पूरी करने की है और कौन सी पूरी करने की ख्वाहिश बोलो नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, मेजॉरिटी क्या कर रही है, घोड़े पे बैठ के घोड़े से कह रहे हैं बता क्या करना है, जिधर तेरा दिल चाह रहा है वहां चल। घोड़ा तो फिर या तो घोड़ी के पास जाके खड़ा हो जाएगा या घास के पास जाएगा या जहां मूड होगा बेलगाम हो जाएगा, वो पता ही नहीं कि आप जा कहां रहे हो। तो यही हिसाब किताब है मेरे भाई। अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया ख्वाहिशात को तुमने बताना है भाई कौन सी ख्वाहिश पूरी करनी है कौन सी पूरी नहीं करनी। सारी ख्वाहिशात कुचलनी भी नहीं है, पूरी भी करनी है। अच्छी चीजों का जज्बा पैदा करो, तभी तो कुरान ने कहा है वफी दाली का फलिया तना फसिल मुंह तना फिसून, दौड़ लगाओ। आगे बढ़ने का हर एक को शौक होता है, लेकिन अल्लाह ने कहा दौड़ का मैदान तुम नहीं बताओगे, हम बताएंगे कौन सा मैदान ऐसा है जिसमें दौड़ के तुम आगे निकल गए तो तुम्हें फायदा है, कौन सा मैदान ऐसा है जिसमें दौड़ के तुम जीत गए तो भी हार गए, कोई फायदा नहीं है उसमें। समझते हो कि नहीं समझते? कुछ दौड़ के मैदान ऐसे जिसमें जीत के भी हार जाता है आदमी, थोड़ी देर ट्रॉफी श्राफी मिल जाती है, उसके बाद कब्र में जाके सब बराबर। दौड़ का मैदान नेक आमाल है, नेक आमाल में दौड़ोगे। वो इतनी तहज्जुद पढ़ता है मैं उससे ज्यादा पढ़ू, उसने इतनी शादियां अस्तगफिरुल्लाह, यानी मैं उससे ज्यादा करूंगी अस्तगफिरुल्लाह, फिर शादियां पता नहीं कहां से बीच में आ जाता है यार। परसों तरसों किसी ने मुझे ताना दिया कि आपकी शादियों के बयानात की वजह से घरों में तलाकें हो रही हैं, बस कर जाओ। मैंने कहा उन तलाक याफ्ताओं की शादियां भी मेरे शादियों में बयानात की वजह से हो रही हैं, तो प्लस माइनस हो गया ना, मैंने कहा हिसाब बराबर हो गया। तो और हमारे शादियों के बयानात की वजह से तलाकें नहीं हो रही हैं, तलाकें तो उस मर्द के नाअहल होने की वजह से हो रही हैं जो नहीं पाल पा रहा दो को तीन को, वो उसका कसूर है, हमारा कसूर थोड़ी है। ऐसे तो फिर शरीयत को कसूरवार ठहराओ, वो हुकूक नहीं अदा कर रहा वो कमबख्त, या आगे से औरत का रिस्पॉन्स इतना शदीद आ रहा है कि वो शरी हुदूद से ही क्रॉस कर जाती है, तो वो फिर उनका अपना जाती मसला है। इसमें इस्लाम, मैं जो बात कर रहा हूं मेरी है ही नहीं भाई वो बात, मैं तो अल्लाह का पैगाम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो खैर पता नहीं शादियों की बात फिर आ जाती है, कुछ खातूनों की बद्दुआएं मुझे लग भी जाती हैं आजकल, फिर भी मैं आवाज नहीं आ रहा, अल्लाह माफ फरमाए। खैर तो क्या बात कर ली थी, देखो यार है? हां देखो सहाबा कराम में यही जज्बा था। गरीब सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह ज़हब अहलुद्दुसूरी बिल उजूर। या रसूलल्लाह मालदार सहाबा दौलत में तो हमसे आगे थे ही, हमें उस पर कोई एतराज नहीं है, क्योंकि मरने के बाद सब क्या हो जाएगा, दौलत गरीब गुरबत सब बराबर, आमाल पे जन्नत मिलेगी, लेकिन ये लोग तो आमाल में भी हमसे आगे निकल गए। भाई देखो, सहाबा को ये नहीं गम था कि इनको दौलत ज्यादा मिली हमें दौलत कम मिली, कोई बात नहीं, मरने के बाद सब क्या है, थोड़े दिन की कहानी है। दौलतमंद की लाश पे भी उतने ही कीड़े होते हैं जितने गरीब की लाश पे, बल्कि दौलतमंद की लाश पे थोड़े ज्यादा होते हैं, उसने पिज्जे बर्गर फुल कार्ब डाइट ज्यादा खाई भी होती है, और कीड़ों को फुल कार्ब डाइट थोड़ी ज्यादा पसंद है, मीठे पे ज्यादा आ जाते हैं। मेरा रिपोर्ट है, गलत भी हो सकती है भाई। खैर, तो गरीब की तो लाश भी सूखी सूखी सी होती है, कीड़े भी कहते हैं कि यार खास किस खाने को मिल नहीं रही है। तो सहाबा को यह नहीं था कि अबू बकर उस्मान रजी अल्लाह अन्हुमा इनको इतनी दौलत और हम गरीब ना, उनको यह था कि या रसूल अल्लाह दौड़ का मैदान आखिरत है ना, तो मसला तो यह है कि दौलतमंद तो आखिरत में भी हमसे आगे है। नबी ने पूछा क्यों कैसे, कहा या रसूल अल्लाह हम जिहाद करते हैं, मालदार लोग भी जिहाद करते हैं, इसमें हम दोनों क्या हो गए बराबर। हम तहज्जुद, हदीस का मफहूम पेश कर रहा हूं, हम तहज्जुद पढ़ते हैं, मालदार लोग भी तहज्जुद पढ़ते हैं, इसमें हम दोनों क्या हो गए, मुंह से बोलने पर गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी नहीं, हम दोनों क्या हो गए बराबर। और रिश्तेदारी जोड़ना, जितनी नेकियां वो भी करते हैं हम भी करते हैं, लेकिन एक नेकी वो करते हैं हम वो नहीं करते, वो अल्लाह की राह में खूब खूब खर्च करते हैं, मस्जिदों में भी, तालीम पे भी, मदरसों में भी, जिहाद में भी, हर जगह। हम तो, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, घर में खाने को मसले हैं हमारे साथ, तो ये तो उस अमल में आगे निकल गए हमसे। तो फिक्र देखो किस चीज की हो रही है सहाबा को, फिक्र ये हो रही है आखिरत में हमसे आगे निकल गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसा अमल बताता हूं, वो अमल तुम कर लोगे तो अजर में मालदारों के बराबर। आपने उनको तस्बीहात बताई, जिक्रुल्लाह बताया, ये जिक्र कसरत से किया करो। जब मालदार सहाबा को पता चला ना, तो उन्होंने भी वो तस्बीहात पढ़ना शुरू कर दी। तो फिर गरीब सहाबा दोबारा, या रसूल अल्लाह जब से उनको पता चला उन्होंने भी वो अमल, अब देखो ये मुकाबला हो रहा है कि नहीं हो रहा, भाई हम आगे ही रहेंगे आखिरत में भी, ये जज्बा इंसान का, तो या ये पसंदीदा है, इसमें आगे निकलो। तो मालदार सहाबा भी ने भी शुरू कर दिया वो अमल, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फिर मिस्कीन सहाबा आए, या रसूल अल्लाह वो तो उन्होंने भी अमल शुरू कर दिया, तो आपने फरमाया ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीही मन यशा, भाई अल्लाह का फजल है, जिसको चाहता है अता कर देता है। अब अल्लाह तुम्हें कोई, ये तो नहीं कि तुम्हारी नेकी का तुम्हें अजर नहीं दे रहा, अब उनको अल्लाह ने ज्यादा नवाज दिया वो ज्यादा कमा लेंगे, तो ये अब अल्लाह का फजल है। ये ऐसा ही है ना जैसे अल्लाह ने सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बना दिया, तो मुशरिकीन ये कहा करते थे कि अगर अल्लाह ने नबी बनाना था तो फलां को क्यों नहीं बनाया, फलां को क्यों नहीं बनाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों बनाया। तो अल्लाह ने क्या जवाब दिया कुरान में कि अल्लाह ने किसी को गरीब बनाया, किसी को दौलतमंद बनाया, तो दौलतमंद बनना और गुर्बत गरीब बनना ये तुम्हारी राय पर नहीं है, ये सिलेक्शन किसकी है, अल्लाह की। हालांकि ये कम दर्जे का मामला है, तो नबूवत तो इससे भी ऊंचे की चीज है, ऊंची चीज है, इसमें तुम्हारी राय थोड़ी चलेगी, इसमें तो अल्लाह की सिलेक्शन होगी, जिसको अल्लाह चाहेगा उसको सिलेक्ट करेगा। तो कुछ नेमतें अल्लाह की तरफ से इजाफी मिलती हैं, यही इश्काल सहाबियात को हुआ कि या रसूल अल्लाह हम औरतें भी नेक काम करती हैं, मर्द भी नेक काम करते हैं, हम भी सदका करती हैं, मर्द भी सदका करते हैं, लेकिन एक काम मर्द हमसे आगे, वो जिहाद करते हैं, हम जिहाद नहीं करती, और कर नहीं सकती, हम औरत हैं, हम कैसे, औरत में उतना बहादुरी तो नहीं होती। तो कुरान में क्या आयतें नाजिल हुई हैं, फरमाया वला ततमन्नौ मा फज़ललल्लाहु बिही बाज़कुम अला बाज़, अल्लाह ने बाज को बाज पर जो फजीलत दी है उसकी तमन्ना मत करो, ये गॉड गिफ्टेड है कुछ चीजें, ये देखो अल्लाह ने मुझे कितनी नेमतें दी, अगर ये कंपेयर करना शुरू कर दिया उसको ये नेमत, तो फिर तो सारी जिंदगी एहसास कमतरी में ही। अल्लाह ने औरत पर ये एहसान किया, उसको इंसान बनाया, औरत बनाया, ये भी तो अल्लाह का एहसान है ना। मूसा अलैहिस्सलाम की मां औरत थी ना, उनके पेट से किसको जना अल्लाह ने, पैगंबर को जना। किसी ने जबरदस्त बात की है कि अल्लाह ने औरत में कोई पैगंबर नहीं बनाया, लेकिन कोई पैगंबर ऐसा नहीं है जो औरत ने जन्म ना दिया हो, कितना बड़ा मकाम अल्लाह ने उनको दे दिया, और उनका जिक्र भी कुरान कर रहा है मूसा अलैहिस्सलाम की मां का। तो यहां एक इश्काल का जवाब देके बस मैं आगे चलता हूं, बल्कि इश्काल तो नहीं है, उसकी एक हिकमत बयान करता हूं कि देखो अल्लाह ने मालदार को फजीलत इस लिहाज से दे दी कि वो नेकी भी करेगा, सदका भी करेगा, تو وہ آگے نکل جائے گا قیامت کے دن. غریب اس طرح سے صدقہ خیرات نہیں کر سکتا. زکات لینے والا ہوتا ہے غریب اور مالدار زکات دینے والا. تو لینے کی کوئی فضیلت ہے؟ کوئی ثواب ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, دینے کے تو بہت ثواب ہے نا. تو دینے والے کو ثواب مل رہا ہے, لینے والے کو تو صرف پیسے مل رہے ہیں, ثواب تھوڑی مل رہا ہے. تو یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے, بھائی اللہ نے پھر مالدار کو اتنا نوازا کیوں ہے؟ اصل میں جواب یہ ہے کہ مالدار کی آزمائش زیادہ ہے, غریب کی آزمائش کم ہے. ہم سمجھتے ہیں غریب کی آزمائش زیادہ ہے مالدار کی کم ہے. نا 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 نا, معاملہ الٹا ہے. غریب کی آزمائش کم ہے, مالدار کی آزمائش زیادہ ہے. تو جس کو زیادہ آزمایا جاتا ہے اس کو بینیفٹس بھی زیادہ دیے جاتے ہیں. جس سے ہارڈ ورکنگ والا کام لیا جاتا ہے اس کو سہولتیں زیادہ دی جاتی ہیں. کمپنیوں میں ہوتا ہے نا, کسی امپلائی کو سب کو تنخواہ برابر, اس کو کسی جنگل میں بھیج دیا کسی اہم مہم پر, تو الاؤنس اس کو زیادہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ بھائی اس کے کام سخت ہے. آپ کہو گے لو بھائی مالدار ایک تو ویسے بھی عیاشی کر رہا ہے اور جنت میں بھی عیاشی کرے گا, تو اس کی آزمائش زیادہ کہاں سے, اس کی تو کم ہے. بھائی یہ جب ہے جب آپ کے پاس پیسے نہ ہو پھر آپ کو یہ لگے گا, جب پیسے آئیں گے پھر آپ کو لگے گا پیسہ ہوتے ہوئے نماز پڑھنا مشکل, بغیر پیسوں کے نماز پڑھنا آسان. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ پیسہ ہوتے ہوئے زنا سے بچنا مشکل, پیسہ ہی نہیں ہے تو کوئی لفٹ ہی نہیں کرائے گی, ٹھیک ہے نا, آرام سے ہنسی خوشی زندگی. رشتہ نہیں مل رہا ہوتا گرل فرینڈ کہاں سے ملے گی؟ ایک آدمی نے مجھے بتایا, مالدار تھا, کہہ رہے میرے پاس بچپن میں پیسہ آ گیا جس سے میں اتنی سخت آزمائش میں پڑا. اس نے کہا جب تک پیسہ نہیں تھا کوئی آزمائش نہیں تھی, نماز پڑھتا تھا, داڑھی رکھ لی میں نے. کہہ رہا جب میرے پاس دولت آئی ہے نا تو لڑکیوں کے فون آنا شروع ہو گئے. پنجاب میں کسی نے واقعہ سنایا کہ لڑکیوں کے فون, وہ مجھے خود اٹریکٹ کرتی تھی, فون نمبر دیتی تھی, پتے بتاتی تھی, اتنے پیسے اتنے پیسے. کہہ رہے میرے دل میں نا خواہشات کا ایک طوفان اٹھتا تھا کہ میں زنا کر لوں, میں زنا کر لوں, میں زنا کر لوں. کہہ رہے میں نے ابا کو بولنا شروع کر دیا میں زنا میں نہ پڑ جاؤں, میری شادی کرا دو. ابا آج کل لفٹ ہی نہیں کراتے. خیر اللہ نے اس کو زنا سے بچایا. کہہ رہے جب غریب تھا تو ایسا کچھ مسئلہ نہیں تھا, جہاں پیسہ آیا اچھا موبائل اچھی گاڑی پیسے والے کا تو پتہ چل جاتا ہے, تو وہاں مشکل ہو گیا زنا سے بچنا. تو پیسے والے کے لیے دین پہ چلنا مشکل. جب پیسہ آتا ہے تو صدقات و خیرات اتنے نہیں ہوتے جتنی شراب و کباب آتا ہے. تو اس لیے اللہ نے اس کو پروٹوکول دیا ہے کہ بھائی اگر تو پیسے کے باوجود بھی دین پہ چلے گا تو تجھے مقام میں زیادہ دوں گا. یہی وجہ ہے حدیث میں آتا ہے جنت میں غریب زیادہ ہوں گے دولت مند کم ہوں گے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وجہ اس کی یہ کہ غریب آدمی کے لیے آسان تھا, وہ پہلے ہی بےچارا, اس کو ناشتے کے ویسے بھی بےچارے کو پیسے نہیں ہوتے, کہتے چلو ہم کیا کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, روزہ رکھ لیتے ہیں. مالدار آدمی کے پاس تو 20 قسم کی چیزیں کھانا کھانے کی, 20 قسم کے موقع ہیں عیاشیوں کے, شو مارنا, تکبر, یہ ساری بیماریاں کس کی ہیں؟ دولت مندوں کی ہیں. اس لیے دولت ہر ایک کے لیے اچھی بھی نہیں ہوتی. اس لیے اللہ سے دولت نہیں مانگنی چاہیے, اللہ سے رزق حلال میں برکت مانگنی چاہیے. پھر اللہ دولت کی صورت میں دے دے یا غربت میں ہی اللہ برکت دے دے, وہ اللہ کی مرضی ہے. علماء نے منع کیا ہے ڈائریکٹ دولت کبھی نہ مانگو اللہ سے, اللہ مجھے مال و دولت دے, یہ الفاظ ہی غلط ہیں. اے اللہ میرے رزق میں کیا دے؟ برکت دے. اب وہ اللہ کی مرضی, برکت کا مطلب خیر, رزق آئے خیر بن کے آئے. تو ورنہ خالی رزق آ گیا تو وہ تو بعض دفعہ قارون کے پاس پیسہ ہی تو تھا, برباد ہو گیا. فرعون کے پاس کیا تھا؟ پیسہ. اس پیسے نے کیا کر دیا؟ اس کی کھوپڑی کو خراب کر دیا. تو زیادہ تر پیسے والے ہی جہنم میں جائیں گے حدیث کے مطابق. تو ہم جو کہتے ہیں نا میرے پاس اتنا پیسہ, تو صحابہ کو غم یہ نہیں تھا ان کے پاس پیسہ کیوں ہے, صحابہ کو غم یہ تھا آخرت میں ہم سے آگے نکل گئے. تو خواہشات کو لگام دینے کی ضرورت ہے. جب خواہشات آپ کے کنٹرول میں ہوں گی تو پھر خواہشات آپ کے حساب سے چلیں گی. تو شریعت نے یہ نہیں کہا خواہشات کو کچل دو. کیا کہا ہے شریعت نے؟ خواہشات کو لگام دو. آپ فیصلہ کرو گے کون سی خواہش پوری کرنے کی ہے اور کون سی خواہش پوری کرنے کی نہیں. دیکھو شوگر کے مریض اپنی لگام کھانے کے معاملے میں ڈاکٹر کے حوالے کرتا ہے. اس کو پتا ہے میری شوگر ہائی رہتی ہے تو اس کا دل تو چاہتا ہے 3 لڈو یہاں سے کھا لوں, 4 لڈو وہاں سے کھا لوں, ادھر سے جلیبی کھا لوں, وہ شہد کی بوتل کھا لوں, میں یہ بھی کھا لوں, یہ بھی کھا لوں. لیکن اس کو پتا ہے بیٹا خواہشات کے پیچھے گئے تو ہو سکتا ہے یہ لڈو میری زندگی کا آخری لڈو ہو, اس کے بعد سویم پہ لڈو کھائے جا رہے ہوں میرے. تو لڈو نہیں کھاتے, چلو بریانی کھائیں گے سویم پہ. تو वो डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर साहब लड्डू खा सकता हूं? डॉक्टर कहेगा भाई आर्टिफिशियल लड्डू खा सकते हो, तो देखने में मीठा लगे, हकीकत में मीठा ऐसे भी आती है ना, चाय मीठी पी सकते हो, यानी वो वाली मीठी जो शुगर के मरीज हो, होती मीठी वीठी नहीं है वो, थोड़ा सा वो पता नहीं कोई केमिकल डालते हैं उससे, डाइट बोतल होती है जैसे, तो डॉक्टर बताएगा ये ख्वाहिश। हाँ, डॉक्टर ये नहीं कहेगा खाओ नहीं, डॉक्टर कहेगा ये खाओ ये नहीं खाओ। अगर कोई डॉक्टर ऐसा है कि खाना पीना ही छोड़ दो, फिर आप वो डॉक्टर ही छोड़ दोगे, खाना पीना नहीं छोड़ोगे। कोई मजहब अगर आपसे ये कहता है कि दुनिया ही छोड़ दो, नंग धड़ा हो जाओ, सारी ख्वाहिशात कुचल दो, तो भाई वो मजहब ही छोड़ दो, फिर वो मजहब दीन फितरत नहीं हो सकता। तो इस्लाम है जो बेतदाल का रास्ता सिखाता है, ख्वाहिशात नहीं छोड़नी है, ख्वाहिशात को लगाम देना। इसलिए तो मैं ब्लॉग बना बना के डालता हूं ताकि ये तसव्वुर लोगों की खोपड़ी से निकले कि मजहबी आदमी तैरता हुआ, घोड़े पे दौड़ता हुआ, जंगल में हिरन का शिकार करता हुआ तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है। ये कॉन्सेप्ट दिमाग से क्या करो, खत्म करो। बहुत नेगेटिव, अभी मेरा हिरन का जो शिकार का जो ब्लॉग किया ना, उससे बहुत नेगेटिव कमेंट्स आए हैं, बहुत ज्यादा। अबे क्या कर रहे हो, अबे ये मौलवियों वाली हरकतें हैं, अबे मौलवियों क्या हो गया भाई, मौलवियों वाली हरकतें कोई अलग सी नहीं होती हैं, जो भी जायज हरकतें वो सारे मौलवी भी क्या कर सकते हैं, कर सकते, कोई हर्ज नहीं है इसमें, तो जायज है ये, तो जायज ना जा, हां नामुनासिब ना हो। बात जायज इंटरटेनमेंट होती है लेकिन वो उलमा पे सूट नहीं करती है। अभी जैसे मैं कनाडा गया ना, तो उन्होंने मेरी हेलीकॉप्टर पे सवारी का इंतजाम किया हुआ था। जापान में गया, इरशाद भाई ने गन पॉइंट पे हेलीकॉप्टर में बिठाया, हमने कहा चलो घूम के आ जाते हैं। जब कनाडा गया, उन्होंने हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया हुआ था, आपको घुमाएंगे बयान के बाद हेलीकॉप्टर पे। मुझे दिल पे बहुत बोझ था कि यार क्या हेलीकॉप्टर में बच्चों की तरह मैं, शिकार तो एक शिकार जो है ना वो तो एक वो खानदानी लोगों का काम है। मैं नहीं कह रहा मैं बहुत खानदानी हूं, लेकिन शिकार में दिलचस्पी हमेशा से किनको रही है, खानदानी लोगों को। इस्माइल अलैहिस्सलाम जो थे ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तीर अंदाजी की तरगीब दी, तो आपने फरमाया इरमो फइन्ना अबाकुम काना रामिया, तीर लगाओ सीखो तीर अंदाजी, इसलिए कि तुम्हारे बाप इस्माइल वो तीर अंदाज थे, उनका गुजर बसर शिकार पे था। शिकार पैगंबरों ने किया है भाई, जो वेजिटेरियन है उनको इश्काल होता है, हाय बेचारा हिरन। कुछ लोगों के ये भी कमेंट है, हाय बेचारा हिरन, तो ये नहीं देख रहे बेचारा मुफ्ती साहब पूरा अफ्रीका का जंगल गया और एक हिरन भी शिकार करके ना लाए, उस पर तरस नहीं आ रहा, हिरन पे तरस आ रहा है। हां हिरन को मारना बराए मारना ये हराम है इस्लाम में, आप उसको मारे किसके लिए, खाने के लिए, इंसान के काम आएगा फिर ठीक है, तो हमने तो खाया कम सदका ज्यादा किया, वो हिरन इंसानों के काम आया, बहुत से दो हिरन तो पूरे उन्हीं को पकड़ा दिए जो बेचारे गए थे हमारे साथ, वो तो खुश हो गए, तो एक हिरन कत्ल हुआ है लेकिन उसके बदले में कितने गरीबों का पेट भरा है। तो अगर मार के फेंक दें फिर ये हराम है, ये तो आप एंटरटेनमेंट के लिए कि जानवर की जान को जाया करो, तभी हम हराम जानवरों का शिकार नहीं करते क्योंकि वो जुल्म है, खाना है नहीं उसको खाम खामे क्यों मार रहे हो। तो ऐसे तो हम भाई एक परिंदा मारना भी हराम समझते हैं। हां जब जानवर का शिकार हम हलाल समझेंगे, जब उसका फायदा किसको हो, इंसानों को, तो इंसानों का पेट भरेगा, हम नहीं खाएंगे तो शेर खा जाएगा उसको, कोई ना कोई तो हिरन को बिलाखिर खाता है, जब बुड्ढा हो जाता है ना हिरन तो फिर भाग भी नहीं सकता, तो शेर ही आके खाएगा, तो शेर से बेहतर नहीं है कौन खा ले, जमशेद खा ले, गफ्फार खा ले, वसीम खा ले, ये ज्यादा बेहतर है, क्या ख्याल है। तो इस्लाम के जो भी जायज चीजें हैं उनको जब आप डेप्थ में जाके गौर करोगे तो वो इंसानियत का उसमें फायदा ही है। तो वो हेलीकॉप्टर का मैं किस्सा सुना रहा था, तो मुझे उन्होंने कहा कनाडा में आपके बयान के बाद हमने हेलीकॉप्टर की राइड रखी है, तो बहुत ज्यादा, फिर मैंने आखिर में कहा यार मुझे लगा था बेचारों ने इंतजाम किया है, तो मैंने कहा भाई ये राइड मैं नहीं करूंगा, ये बच्चों के खेल हैं हवा में यूं पतंगों की तरह हेलीकॉप्टर में उड़ना, और मैंने कहा ये इसमें मुझे दिलचस्पी बोलो नहीं, तो वो जबरदस्ती कैंसिल करवाई। ये मैंने कहा उलमा पे सूट भी नहीं करता ना, ये जहाज में जा रहे हैं तो व्लॉग बना रहे हैं, मैं पायलट के साथ बैठा हुआ हूं या मैं यूं, ये तो अजीब सा छिछोरपना सा लगता है। तो जो जायज चीज है पायलट के साथ, चलो पायलट की हौसला अफजाई के लिए भी समझ में आता है, लेकिन हेलीकॉप्टर का मुझे समझ में नहीं आता, उनको मैंने सख्ती से मना कर दिया। हां जो नियाग्रा फॉल है वो कुदरत का एक शाहकार है, वो तो हम देखेंगे, देखने जाएंगे, इंजॉय करेंगे, किसी को तकलीफ होती है जलाएंगे। तो क्यों तकलीफ हो रही है तुम्हें भाई, तुम्हें अल्लाह ने पैसा दिया तुम भी चले जाओ, नहीं दिया तो दुआ करो अल्लाह दे दे हम भी जाके चले ये तो जब हम दूसरों को देखते थे हम यही दुआ करते थे, अल्लाह हमें भी दे दे हम भी तो चक्कर वक्कर लगा ले, नहीं दिया तो कोई टेंशन में नहीं आते थे कि चलो भाई नहीं है तो बैठो आराम से, और वैसे भी मैं कौन सा कनाडा अपने खर्चे पे गया हूं, मुझे तो स्पॉन्सर किया था, बयानात के लिए बुलाया था, हेलीकॉप्टर में घुमाने के लिए। ये तबलीगी दौरा था मेरा जो बयानात के लिए था, ये घुमाई फिराई तो जिमनन ग्रेवी में चल रही होती है। मेरे बैरून मुल्क दौरे तफरीही नहीं होते, तबलीगी दौरे होते हैं। उस तबलीगी दौरों में बीच में वो लोग मेरी खुशी की खातिर कुछ चीजें ऐड कर देते हैं, तो उस पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। और मुझे जो एंटरटेनमेंट का जो शौक है वो बड़ा अच्छे किस्म के शौक अल्हम्दुलिल्लाह पाले में। मिसाल के तौर पर मैं जब कनाडा गया ना तो नॉर्थ पोल हमने सफर किया है, जहां 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है, बिल्कुल दुनिया का आखिरी किनारा। मैंने कहा ये लाजमी जाएंगे, और वो 3-3 फ्लाइट है, उसका मैंने बड़ा खानदानी व्लॉग बनाया है, वो आप देखिएगा, लाजमी मजा आएगा इंशाल्लाह। क्योंकि ये एक दुनिया का किनारा देखने का किसको शौक नहीं है भाई, नॉर्थ का एंड, एंड ऑफ द वर्ल्ड। नॉर्वे में भी है, वहां भी इंशाल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी तो जाऊंगा। खैर, तो असल बात जो चल रही थी मैं उसी की तरफ आता हूं। क्या बात चल रही थी, दाएं में बहुत हो गई है। तो ख्वाहिशात को क्या करना है, कंट्रोल, हलाल और हराम में फर्क। तो यही कुरान की दावत है कि इंसान जल्दबाज है, वो हलाल और हराम में फर्क किए बगैर, ये देखे बगैर कि इसका मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा, बेलगाम होकर ख्वाहिशात के पीछे भागता चला जा। जैसे किसी थरकी को कोई लड़की नजर आ जाए ना, कोई खूबसूरत सी लड़की, बस आजकल नौजवान यही कर रहे हैं, बैठे हुए होंगे कहीं। एक हकीम साहब ने मुझे बताया, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, वैसे तो अभी जिंदा है लेकिन बूढ़े हो गए, उन किसी को पता नहीं चलेगा किसकी बात कर रहा हूं। उन्होंने मुझे अपना वाक्य सुनाया, मुझे कहने लगे मेरी 2 बीवियां हैं। मैंने कहा माशाल्लाह। कहने लगे मैं बहुत टेंशन में हूं। मैंने कहा क्यों भाई? कहते हैं मैं अपनी क्लिनिक में या मतब में बैठा हुआ था, अच्छा वाला शादीशुदा था, पहली बीवी बड़ी खानदानी, शरीफ, शुरफा, उससे बच्चे भी, तो यहां से कोई लड़की खूबसूरत सी गुजर के गई अपनी मां के साथ में। अल्लाह माफ फरमाए, किसी को पता थोड़ी है किसकी बात कर रहा हूं, इसलिए कोई गीबत नहीं है। कह रहे हमें ऐसी ठरक, हम भी पीछे पीछे निकल लिए। कह रहे बड़ी खूबसूरत सी कोई जा रही थी, बेपर्दा सी थी, बाल बाल खुले हुए, बड़ी मॉडर्न टाइप की, तो कह रहे मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं यहीं पर कोई माजून माजून खा के अल्लाह माफ फरमाए बैठे हुए होंगे, तो कह रहे मुझे नजर आई तो ठरक निकल ली हम भी पीछे। अबे तू आप कोई खानदान देखो उसका। कह रहे जाते जाते मैंने उसका घर तलाश कर लिया, बस अट्रैक्शन रोड पे पसंद आ गई, तो मैंने पैगाम भेजा, पैसा वैसा देख के उन्होंने शादी कर दी। वो इतनी बदअखलाक निकली, कह रहे मेरा तो सर गंजा हो गया उसकी वजह से, कभी मुंह से तमीज से बात करती नहीं, अजाब में आ गई है जिंदगी। तो मैंने कहा हकीम साहब ये कौन सा तरीका है यार, कोई रोड पे चलती हुई लड़की जा रही है पीछे निकल ली उसके। तो ये है ख्वाहिशात बेलगाम, जहां दिल चाह रहे वहां निकल लिए। हमारे एक उस्ताद कराची के किसी इलाके में थे, इलाके का नाम नहीं बताऊंगा, इमाम थे वो मस्जिद के, तो कहने लगे मैं इमाम था तो वहां अल्लाह माफ फरमाए, कह रहे हैं वो खास इलाका है, बहुत ही अजीब किस्म के वहां का कल्चर है। कहते हैं मैंने वहां के बूढ़ों को देखा, कोई नमाज रोजा नहीं, ऐसे ठरकी बूढ़े, ये उनके अल्फाज हैं, हमारे हदीस के उस्ताद थे वो, कहते हैं ऐसे ठरकी बूढ़े बैठे रहते थे थड़े पे ना बाहर होटलों पे, कोई काम धंधा नहीं उनका, बस बैठे हुए चाय चल रही है। कह रहे उधर से कोई औरत आती भी नजर आती ना उसको देखते वो, और वो देखते 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 जब तक गली के पार उसका दुपट्टा भी नजर आना बंद हो जाता ना, कोई दुपट्टा भी नजर, वो पूरा सारे मिलके उसको देख रहे होते। कह रहे सारा दिन यही काम था उनका, उधर से कोई फिर देखा आ रही है तो सारे यूं शुरू। तो कह रहे मैं उनके मुंह को देखता था कि यार तुम्हें शर्म नहीं आती इस बुढ़ापे में। ये है ख्वाहिशात का बेलगाम होना। और बूढ़े हैं वो तो पीछे जा भी नहीं सकते ना, वो हकीम साहब तो उस वक्त जवान थे, निकल लिए पीछे, ये तो जा भी नहीं सकते, मत देखने ही पर ही है, और क्या करेंगे बेचारे, इतने बूढ़े हो गए देख के खुश हो रहे हैं। तो जब इंसान मेरे भाई ख्वाहिशात बेलगाम हो जाती है, उसकी जिंदगी बहुत बर्बाद। अपनी ख्वाहिशात के लिए अपने हाथों से अपनी खुशियों को आग लगाता है। अब इन बूढ़ों का बेचारों का क्या, ना अल्लाह का नाम लेने में मजा आएगा इनको, ना नमाज में मजा आएगा, ना फजर में, ना जोहर में, ना तहज्जुद में, ना तिलावत में, ना दुआओं में। इन मनहूस गुनाहों की वजह से अल्लाह दुआओं की लज्जत छीन लेते हैं, जिक्र की लज्जत छीन लेते हैं, तिलावत की लज्जत। हमारे बूढ़े जो मस्जिदों में आते हैं, कैसा उनके चेहरे पर रौनक होती है, आके बैठ जाते हैं नमाजों से आधा आधा घंटा पहले, जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह का नाम ले रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, कितनी उनके चेहरे पे एक नूर आ जाता है इससे, दिल चाहता है उनसे दुआ करवाओ, उनसे दम करवाओ। और एक वो टर्की टाइप के होते हैं, बैठे हुए हैं सारा दिन, कैसी उनकी जिंदगी देख के लग रहा होता है ये परेशान है। तो इसलिए मेरे भाई अल्लाह ने फरमाया खुलिकल इन्नल इंसान खुलिका हलुआ, जल्दबाज है, फौरन ख्वाहिशात के पीछे भागता है। अब उस बूढ़े को ये तो चाहिए था ना, जो देख रहे हैं यहां से वहां तक, यार नौजवान भी हमें देख रहे हैं, वो क्या बोलेंगे इस बुढ़ापे में आप क्या कर रहे हो, थोड़ा सा नजर को झुका लो। लेकिन ब्रेकें क्या हो गई हैं, फेल, ब्रेकें फेल, ना इज्जत का ख्याल है, औलादों का भी ख्याल नहीं है, औलाद क्या कहेगी, अब्बा को देखो क्या कर रहे हैं। तो ये ब्रेकें फेल, तो अल्लाह ने क्या फरमाया, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ब्रेकें फेल नहीं होती, इल्लल मुसल्लीन। मेरे बयान में अक्सर तमहीद लंबी होती है, बयान का हासिल मुख्तसर, फरमाया हां जो नमाज की पाबंदी करें, पढ़ना नहीं है, क्या करना है, पाबंदी। नमाज इंसान को बेहयाई से रोकती है, ख्वाहिशात को लगाम देती है, क्योंकि फजर में उठना मुश्किल काम है, वजू करना मुश्किल काम है, मुश्किल काम करके इंसान अल्लाह के सामने आके खड़ा होता है, रुकू सजदा तस्बीहात, दिल में नूरानियत पैदा होती है, गंदे कामों से नफरत। जैसे नमाजी को गंदा जिस्म पसंद नहीं होता क्योंकि वो पाक साफ रहता है, ऐसे गंदा अमल से भी उसको क्या हो जाती है, नफरत। यहां लोग एक इश्काल करते हैं कि हमने तो बड़े बड़े नमाजी देखे हैं उल्टे उल्टे काम करते हुए, बेहयाई के काम करते हुए। उसका जवाब यह है, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे डॉक्टर कहता है कि पेनाडोल की दो गोली खाने से सर का दर्द ठीक होता है। अब आपको, मैंने तो उस दिन बंदा देखा चार गोलियां खाई फिर भी उसका दर्द ठीक नहीं हुआ, तो भाई इसमें पेनाडोल का कसूर नहीं है, उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर गलत किस्म के डल गए हैं, या उसको दर्द ही कोई अलग टाइप का हो रहा है, या वो पेनाडोल खा खा के भी इतना ज्यादा वो दर्द वाले काम करता रहे सर को, सर के दर्द के, कि उसका दर्द इससे ठीक नहीं हो रहा। तो उसको यूं कहा जाएगा, भाई ये अगर पेनाडोल ना खाता तो जितना दर्द हो रहा है ना इसका डबल होता। तो इसी से खूब समझ लो, कुरान कह रहा है नमाज इंसान को बेहयाई से रोकती है, नमाजी आदमी बेहयाई से दूर होता है, नमाज में ये ताकत है कि बेहयाई से रोकती है इंसान को, बुरे कामों से रोकती है। अगर कोई नमाजी बुरे काम कर रहा है तो समझ लो अगर ये नमाज ना पढ़ता तो ये बुरे काम डबल कर रहा होता। तो ये नमाज का कसूर नहीं है, ये है ही इतना नलायक कि इसकी नमाज ने रोका तो है लेकिन पूरे तौर पर रोक नहीं पाई, या ये नमाज पढ़ नहीं रहा है, ड्रामे कर रहा है। ये नमाज पढ़ना है खुशू खुजू के साथ होता है ना, फॉर्मेलिटी पूरी करना थोड़ी होता है। आजकल कैसे नमाज पढ़ी जा रही है, उठे आदत पड़ी हुई, आए रोबोट की तरह, पंखों का हिसाब हिसाब किया चार रकतों में। वो अक्सर मैं लतीफा सुनाता हूं ना, एक इमाम ने चार रकत के बजाय तीन के बाद सलाम फेर दिया, एक आदमी ने कहा तीन पढ़ी है आपने, इमाम ने कहा सारे बेवकूफ हैं क्या, किसी ने लुकमा नहीं दिया, तू अकेला, तुझे कैसे पता चला तीन पढ़ी है। कह रहे मैं, मेरी चार दुकानें हैं तो हर रकत में एक दुकान का हिसाब किताब चल रहा होता है ना, तो अभी तीन दुकानें कंप्लीट हुई थी आपने सलाम फेर दिया, तो ये वाली नमाज बेहयाई से रोकेगी इंसान को, है भाई। सारे मसाइल किसमें चल रहे होते हैं, फिर हिल इतना रहे होते हैं, ना जाहिरी खुशू है ना बातनी खुशू। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला नमाज में हिलने पर इतना नाराज होते थे, फरमाते थे वैसे सही खड़े होगा ये, बिल्कुल आराम से ना सफ में ऐसे तमीज से बैठा हुआ होगा, जब इकामत हो रही है फिर भी तमीज से खड़ा होगा, ना कहीं खुजली हो रही है उसको, ना कहीं खारिश हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, ना इसके साथ वाले को कुछ खारिश वारिश हो रही है, दोनों आराम से। जैसे ही नीयत बांधी, कभी यहां को जा रहा है, देखा होगा आप लोगों ने, कभी यूं शुरू हो जाएगा, कभी नाक में उंगलियां घुमा घुमा के मुताला भी कर रहा है क्या निकला इसमें, रिपोर्ट तलब कर रहा है कि ये रिपोर्ट आई भी है कि यह हवाई बस घुमाया है, कभी यूं हिल रहा है, कभी यूं हिल रहा है, कभी क्या कर रहा है। तो ये क्या है भाई, कुरान तो कह रहा है कोमू लिल्लाही कानितीन, खुशू व खुजू के साथ अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, खुशू व खुजू के साथ। तो खुशू व खुजू में दिल का खुशू भी है, दिल तो अपने इख्तियार में नहीं है, जितना लगा सकते हो लगाओ, और जाहिरी लिहाज से भी खुशू व खुजू पैदा करे इंसान, उसके आदाब का ख्याल करे, तो फिर नमाज इंसान को बेहयाई से रोकती है, जल्दबाजी की आदत खत्म करती है नमाज इंसान के अंदर से, वो फिर ख्वाहिशात को लगाम देना शुरू करता है। इल्लल मुसल्लीन, अल्लाह ने आगे फरमाया अल्लज़ीनहुम अला सलातिहिम दाइमून, खाली नमाज पढ़ना काफी नहीं है, नमाज पे पाबंदी करते हैं। पाबंदी करना आसान काम नहीं है। देखो कुरान ने किसी गुनाह के बारे में नहीं कहा कि बहुत मुश्किल है, नमाज के बारे में अल्लाह ने कहा इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशीईन, ये बहुत मुश्किल काम है, سوائے ان لوگوں پہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے. تو اللہ نے خود مانا ہے پڑھنا مشکل نہیں ہے, پڑھتے رہنا کہ کبھی بھی زندگی میں قضا نہ ہو یہ مشکل کام ہے. تو یہ مشکل کی جس کو توفیق مل جائے وہ بہت بڑا کامیاب ہے. ہمارے ایک ہندوستان سے رشتے دار آئے تھے, ہم جو میری عمر 10-12 سال تھی, تو میں نے کئی بار یہ پہلے بھی بیان میں واقعہ سنا, یہ میں صرف موٹیویشن کے لیے سناتا ہوں کہ بھائی ایسی نماز ہونی چاہیے. نمازی آدمی کو ہر وقت فکر ہوتی ہے, جو آرام سے بیٹھا ہوا ہے نا, پڑا ہوا ہے آرام سے, گھڑی نہیں دیکھ رہا بار بار, اس کا مطلب وہ نمازی نہیں ہے. نمازی جہاں بھی جائے گا نا بار بار گھڑی دیکھے گا, یار نماز میں ٹائم کتنا ہے, قریب میں کوئی مسجد ہے تو جماعت ہونے والی ہے کہ نہیں ہونے والی. دیکھو میرے لیے اب مشکل ہو گیا ہے, میں کہیں سفر میں جاتا ہوں, پہلے میں اس کا اہتمام کرتا تھا جماعت ہونے والی ہے کہیں قریب, کیونکہ سفر میں بھی اگر قریب میں مسجد ہے تو جماعت سے نماز پڑھنی پڑے گی آپ کو اگر قریب میں مسجد ہے, کیونکہ لوگ جاتے ہیں پنجاب 10-10 دن کے لیے جماعتیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں, ہم تو مسافر ہیں. او بھائی آپ ٹھیک ہے شرعی لحاظ سے مسافر ہو, مگر یہاں تو آپ نے اسٹے کیا ہوا ہے نا, ٹھیک ہے 2 رکعت پڑھو گے, لیکن مسجد اگر قریب میں ہے تو پھر تو امام کے پیچھے پڑھنی پڑے گی, مسجد کی جماعت چھوڑنا آپ کے لیے جائز تھوڑی ہے. ہاں ٹریولنگ کے دوران کہیں بس نکلنے کا خطرہ ہے یا کوئی وہاں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, اس میں ٹھیک ہے آپ مسجد کی جماعت چھوڑ سکتے ہیں. اب ہمارے لیے مسئلہ یہ ہو گیا کہ اب مشہور ہونے کی وجہ سے کہیں کراؤڈ میں جانا بہت مشکل ہو گیا, سیلفیاں ویلفیاں اتنی کہ وہ آدھے گھنٹے کا کام 2-2 گھنٹے, پھر سیکیورٹی کے مسائل. تو اب میں بعض دفعہ نہیں جاتا مسجد میں, کہیں جا رہا ہوتا ہوں یار گھر پہ پڑھ لیں گے یا راستے میں پڑھ لیں گے. لیکن مسئلہ شرن یہی ہے کہ نمازی آدمی ہر وقت کیا کرے گا, تھوڑی تھوڑی بات گھڑی دیکھے گا, یار نماز کا ٹائم تو نہیں ہو گیا. تو میں وہ واقعہ سنا رہا تھا, ہمارے ایک رشتے دار آئے انڈیا سے, میری عمر 10-12 سال تھی اس وقت, ان کی عمر تھی 70 سال. تو ہم سب گھر والے ان کو لے کر گئے کلفٹن گھمانے کے لیے, چلو جی آپ کو کیا دکھاتے ہیں ہم, کلفٹن. اچھا ہم نے اپنی دادی سے اور اپنے والد وغیرہ سے سنا کہ ان کی زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں ہوئی, 70 سال کا بندہ اور بالغ ہونے سے لے کے اب تک کبھی نماز قضا نہیں ہوئی. یہ نہیں کہ ذمے میں نہیں ہے, قضا ہی نہیں ہوئی. کتنا اہتمام کیا ہوگا بھائی. تو میں نے کہا یار یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, بعض دفعہ سوتے میں نکل جاتی ہے, بعض دفعہ بھول گیا انسان, کوئی کام میں مشغول ہو گیا. حدیث میں آتا ہے لیس فی النوم تفریط, کسی کی آنکھ ہی نہیں کھلی تو اس کو گناہ نہیں ملے گا, اس نے انتظام کیا تھا اٹھنے کا لیکن نہیں کھلی تو وہ تو معذور ہے نا. تو یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن کتنا اہتمام کیا ہوگا ایک بندے نے کہ کبھی سوتے میں بھی نہیں ہوئی قضا, یعنی ایسا ان کا سونے جاگنے کا پورا اہتمام تھا. خیر جب ہم ان کو تفریح پہ لے کر گئے نا, تو ان کا جو ہم نے عمل دیکھا اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ ان کے بارے میں جو رپورٹ ہے وہ غلط نہیں ہے. بھائی ہم ان کو جھولوں میں لے کے, وہ 70 سال کے جھولے کیا جھولتے, لیکن جو بھی ان کے حساب کے جھولے تھے یا جو بھی ان کو دکھانا تھا, بار بار بھائی مغرب کا ٹائم ہو گیا, سورج غروب ہو گیا, بار بار. ابے ہم نے کہا بھائی یہ تو کسی تفریح میں دلچسپی نہیں لے رہے, ان کو تو بس اس سے مغرب کا ٹائم ہو گیا, ظہر کا ٹائم ہو گیا, عصر کا ٹائم ہو گیا, عشاء کا ٹائم ہو گیا. میں نے کہا بھائی واقعی یہ کیا ہے, واقعی یہ نمازی ہیں. آج کل نمازی لوگ بیمار ہوئے نمازیں چھوڑ دی, کوئی وضو کرانے والا نہیں ہے, بار بار کپڑے چینج کرنا بہت ٹینشن ہے ایکچولی. اب دیکھیں کیسے ایسے تو عجیب عجیب سے اسٹائل ہوتے ہیں لوگوں کے, جہازوں میں بیٹھے ہیں پڑے سو رہے ہیں, فجر کا ٹائم گزر گیا, ظہر کا ٹائم. ابے بھائی جہاز ہے سفر ہے, اور کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیٹے لیٹے پڑھ رہے ہوتے ہیں. ابے بھائی یہ لیٹے لیٹے تو اس کے لیے ہے جو کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکے وہ بیٹھ کے پڑھے, جدھر منہ ہے ادھر منہ اٹھا کے پڑھ رہے ہیں نماز. تو قبلہ اللہ نے ایسے ہی بنا دیا, نفل نماز آپ سنتے ہیں جہاں منہ ہو سفر میں پڑھ سکتے ہیں سواری پہ, لیکن فرض نماز تو آپ کو قبلے کی طرف رخ کرنا پڑے گا. کہتے ہیں ہمیں جہاز میں کہاں سے پتا چلے گا, بھائی ایئر ہوسٹس سے پوچھ لو یار, ویسے تو چائے منگوا رہے ہو ایئر ہوسٹس سے, اس وقت شرم نہیں آ رہی, یہ نہیں سوچ رہے کہ نامحرم ہے, کولڈ ڈرنک منگوا رہے ہو, کھانا منگوا رہے ہو, تو منہ سے پھوٹ لو, پوچھ لو کہ جی قبلہ کس طرف ہے. اکثر ایئر ہوسٹس بتا دیتی ہے, ان کو نیویگیشن ہوتا ہے نا, ان کے پاس سب پتا ہوتا ہے, نہیں تو وہاں ایل ای ڈیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں, بہت کچھ ذرائع ہیں. اگر انسان چاہے نا کہ میری نماز قضا نہ ہو تو بہت سارے طریقے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہی نہیں ہیں. بسوں میں بیٹھے ہوں گے مسٹڈے بنے, پیشاب آ رہا ہوگا تو بس باپ بھی رکوائے گا, نماز قضا ہونے والی ہے. پھر کہتے ہیں یار ایکچولی ہم نے ڈرائیور کو کہا تو اب روک نہیں رہا تو کیا کریں. بھائی جان ایسے شرافت کا دور ہے ہی نہیں, آپ ایسے رکواؤ جیسے آپ کو بہت زور کا آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. پھر آپ یہ کہتے کہ ایکچولی اب ڈرائیور روک نہیں رہا تو چلو شلوار ہی ٹھیک ہے فی الحال, وہاں تھوڑی ایسا ہوتا ہے. تو پھر بھی نہ روکے, آپ نے پورا فورس کر لیا, پھر سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے پڑھو, ماسک پھر بھی نہیں ہے, لیکن پھر اس کو نیچے اتر کے لوٹا لو. تو نماز اس طرح سے ہوگی تو میرے بھائی پھر وہ آپ کو برائی سے روکے گی. کوئی کام کنٹینیوسلی پابندی سے کیا جائے. الذین هم علی صلاتهم دائمون, آگے پھر اگلی آیتیں, اس پر میں نے پچھلے ہفتے بھی بیان کیا تھا لیکن چلو دوبارہ ہو گیا. تو نماز کی بہت شدید پابندی کی ضرورت ہے. تو انسان کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے بھائی بے لگام نہیں چھوڑا جائے گا, اس کو اپنے اندر کچھ تبدیلی. اور میں آپ کو گارنٹی سے کہہ دوں, دیندار بننے کا خدا کی قسم, لا الہ الا اللہ, آخرت میں فائدہ بعد میں, دنیا جنت بنتی ہے. بہت مزے کی زندگی ہوتی ہے. کس کی؟ جو اللہ والے ہوتے ہیں, بہت مزے کی زندگی ہوتی ہے ان کو. خام خواہ کی ٹینشن والی چیزوں سے ٹینشن ہوتی ہے. آج کل لوگوں کو بغیر ٹینشن والی چیزوں سے ٹینشنیں ہو رہی ہیں. کوئی ٹینشن کی چیز ہو تو یار کوئی سمجھ میں آتا ہے. خام خواہ کی ٹینشنیں ہیں. بحریہ ٹاؤن پھر اوپر جانا شروع ہو گیا, کاش میں خرید لیتا. ابے تیرا آٹا دال چل رہا ہے میرے بھائی, یہ ٹینشن کی چیز تھوڑی ہے یار. وہ امریکہ نکل گیا, ہم وہیں کے وہیں ہیں. پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کے مسائل ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں. دیکھو جب آپ دیندار بن جاؤ گے آپ کا ظرف اتنا بڑا ہوگا, آپ کہو گے مجھے اگر دو وقت کی روٹی مل رہی ہے, سر چھپانے کی جگہ ہے, اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہے, تو مجھ سے زیادہ عیاش دنیا میں کوئی نہیں ہے. حالانکہ اتنا ملتا نہیں, اس سے دس گنا زیادہ ملتا ہے. تو آپ کی ضرورت آپ کے ذہن میں آئی اتنی ہے, مل دس گنا زیادہ رہے تو بہت زیادہ خوش ہوگے کہ نہیں ہوگے. اور اگر دنیا کو اصل بنا لیا, اللہ کو اسلام کو زندگی سے نکال دیا, تو پھر آپ کی سوچ یہ ہوگی جتنا بھی آ گیا نا وہ کیا ہے, کم ہے. اپنی بیوی بھی اچھی نہیں لگے گی آپ کو, بولے کہ یار وہ بھابھی اس کی وہ دیکھو کیسی ہے, اس کی کیسی ہے, یہ کیا ہے یار. اسی میں میرے پاس آ رہے ہوتے ہیں لوگ, گھٹ گھٹ کے مر رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں ان کو سوچو جن کے پاس جو کما رہے ہیں, جن کو کوئی 40 سالے عمریں ہو گئی کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں, تو خوش ہو جاؤ تمہیں مل تو گئی نا. تو دنیا کی محبت ہر ٹینشن کی جڑ ہے, اور دنیا کی محبت دل سے نکل گئی تو ہر خوشیوں کی جڑ پیدا ہو گئی, بیس پیدا ہو گئی آپ کے اندر. اللہ تعالی سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے بعد انشاءاللہ 7:30 نماز ہے, تو نماز کے بعد تھوڑی دیر سوال جواب کا سیشن ہوگا. جو لوگ بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں, جانا چاہیں جا سکتے ہیں. کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو عشاء کے بعد پھر انشاءاللہ سیشن ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی نے سوال پوچھا ہے, آپ کہتے ہیں کسی سے ہاتھ کا مذاق نہ کرو, لیکن جب ہمارے دو اکابر یہ کام کر رہے تھے تو آپ نے اس کی تاویل کی بجائے اس عمل کو غلط کہنے کے. دو بوڑھے بزرگ کر رہے تھے. دیکھو کوئی شخص کام کر رہا ہو تو شریعت میں یہ ہے کہ اس کا اچھا محمل تلاش کرو. تو اگر دو بوڑھے آدمی یہ کام کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں, تو اس کا اچھا محمل ہی تلاش کیا جائے گا. ان کو کیا یہ کام بوڑھے بوڑھے تھوڑی کر رہے تھے, معاذ اللہ. اور ایک بزرگ ہوں, نمازی ہوں, تہجد گزار ہوں, ان کی سیرت پہ کتابیں لکھی گئی ہوں, اس کی تو تاویل نہ کرنا اس کی علامت ہے کہ آپ کا دماغ خراب ہے. باقی ہاتھ کا مذاق کرنے سے اس لیے منع کیا جاتا ہے, اس زمانے میں احتیاط ضروری ہے. بوڑھوں کو تھوڑی ہم منع کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے ہاتھ کا مذاق, بوڑھوں میں بےچارے نے کیا ہو. ہم تو جوانوں کے ساتھ ہاتھ کے مذاق سے منع کر رہے ہیں, کیونکہ ہاتھ کا مذاق اکثر کون کرتے ہیں؟ جوان لوگ کرتے ہیں. تو اس میں 100 ایک برا ہوتا ہے, اور اس میں بھی دو جوان اگر ہاتھ کا مذاق کر رہے ہوں گے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ غلط ہیں, اس میں بھی ہم تاویل کریں گے. بھائی ویسے ہی ہو سکتا ہے مذاق کر رہا ہوں, اس کو یہ تھوڑی کہا جائے گا کہ یہ ماشاء اللہ گے ہیں, یہ کوئی بری حرکت کر رہے ہیں. تو شریعت میں بدگمانی کی اجازت نہیں ہے. ہاں احتیاط کی بیس پہ ان کو منع کیا جائے گا کہ بھائی اس زمانے میں خاص طور پر ہاتھ کا مذاق ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ 100 کوئی ایک گے ہوتا ہے, کوئی بری سوچ والا ہوتا ہے, اس کو پھر موقع مل جاتا ہے. آج بھی اگر دو بندے ہاتھ کا مذاق کر رہے ہوں گے تو ہم تاویل تو ان کی بھی کریں گے, برا تھوڑی. شریعت میں برا کسی کو قرار دینے کے لیے بہت مضبوط دلیل ہونی چاہیے, لیکن منع کیا جائے گا کہ یہ احتیاط کے خلاف ہے. ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے دو بچے ہوئے, اس کے بعد جب میں نے دیکھا مہنگائی بہت ہے تو نسل روک لی, کیونکہ اللہ نے پہلے اسباب اختیار کرنے کا کہا ہے. اللہ نے اسباب اختیار کرنے کا کہا ہے, لیکن اس چیز کو اللہ نے سبب ہی قرار نہیں دیا. اسباب پیدا کس نے کیے ہیں؟ اللہ نے. تو جس چیز کو اللہ نے سبب بنایا ہے وہ اختیار کیا جائے گا. تو اللہ نے اولاد کی کثرت کو مہنگائی کا سبب نہیں بتایا, بلکہ رزق کے لانے کا ذریعہ بتایا ہے, رزق کی فراوانی کا ذریعہ بتایا ہے. آپ فیملی پلاننگ والوں کی باتوں میں آ کے نسل روک رہے ہو کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے, تو اس کا مطلب آپ فیملی پلاننگ والوں کو اللہ پہ ترجیح دے رہے ہو. اللہ کہہ رہے کہ اولاد رزق کا ذریعہ ہے, اور اس کی دلیل بھی دی اللہ نے, خالی ہوائی دعوے, معاذ اللہ کوئی دعوے نہیں کیے اللہ تعالیٰ نے, دعوے برائے دعوے. اللہ نے کہا دیکھو بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے, حالانکہ پہلے دودھ کہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. دودھ ایک سائن ہے, ایک علامت ہے کہ اس کی بنیادی ضرورتیں میں پوری کروں گا, میں غافل نہیں ہوں اس سے. اب بے وقوف آدمی کہتا ہے کہ صرف دودھ ہی پیدا کیا ہے نا اللہ نے, تو بچے کو خالی دودھ تھوڑی چاہیے, بچے کو تو لنچ کے لیے پیسے بھی چاہیے, کنوینس کا خرچہ بھی چاہیے, میڈیکل الاؤنس بھی چاہیے, فلانا بھی چاہیے, ڈمکانا بھی چاہیے. تو بے وقوف یہ کہتا ہے, عقل مند کہتا ہے بچے کو ابھی فی الحال دودھ کی ضرورت تھی, اپنے اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کر دیا یہ بتانے کے لیے کہ جو ضرورتیں ہوں گی وہ میں پوری کروں گا. تو اس لیے فلسفہ ہی سرے سے غلط ہے. اور اس فلسفے کا نتیجہ کیا نکلا ہے, انگریزوں نے بچے ہی پیدا کرنا ختم کر دی ہے, حالانکہ وہ معاشی ترقی کی انتہا, پوری دنیا کی دولت کھا گئے وہ, لیکن کہتے ہیں غربت مہنگائی ہے, ایکچولی بچے کیسے پالیں گے ہم. اب تمہارے پاس تو بے تحاشا پیسہ ہے. تو یہ فلسفے کے غلط ہونے کی ایک بڑی علامت یہ بھی ہے کہ غریبوں کے بچے زیادہ ہیں, مالداروں کے بچے کم ہیں. جن کے پاس بچے پالنے کے بے تحاشا پیسے ہیں ان کے بچے کم ہو رہے ہیں, ان کے کم بچے ہیں. اب جتنا بڑا بنگلہ ہوگا نا بچوں کی تعداد اس میں اتنی ہی کم, اور جتنا چھوٹا گھر ہوگا بچے اس میں اتنے ہی زیادہ ہوں گے. تو یہ دماغ کا کھیل ہے, خالی دماغ کا کھیل ہے. تو یہ پٹیاں غلط پڑا دی گئی ہیں ہمیں, غریب آدمی کو اولاد کی ضرورت زیادہ ہے تاکہ وہ اولاد جوان ہو کر اس کے کاموں میں معاون اور مددگار بنے. یہ خوب سمجھ لو, دو چیزوں سے لوگ غافل ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی نا کہ بچوں کی پیدائش یہ غربت ختم کرنے کا ذریعہ ہے, غربت کم کرنے کا ذریعہ نہیں ہے, یہ بڑھانے کا ذریعہ, غربت ختم کرنے کا ذریعہ ہے. آبادی بڑھتی ہے تو معاشی ترقی زیادہ ہوتی ہے. اب کسی ملک میں آبادی زیادہ ہے اور غربت ہے تو غربت اس کی آبادی کی وجہ سے نہیں ہے, غربت دوسرے اسباب کی وجہ سے ہے. جیسے پاکستان میں غربت ہے, آبادی بھی بہت ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں آبادی کی وجہ سے غربت ہے. اگر آبادی کم ہوتی اور زیادہ غربت ہوتی, کیونکہ کمانے والے اور کم ہوتے ہیں سوسائٹی میں. جب آبادی کا ریشو بڑھتا ہے تو جوانوں کا ریشو بڑھتا ہے. جس کنٹری میں جوان کا ریشو بڑھے گا تو کام کا ریشو بڑھے گا نا, اس ملک میں ورک کرنے والے لوگ زیادہ ہوں گے, لوگ سب کمائیں گے. کما رہے ہیں کہ نہیں کما رہے, یہاں لوگ کما رہے ہیں. آپ کہتے ہیں بہت سارے بے روزگار بھی تو ہیں, تو وہ بے روزگار وسائل کی کمی کی وجہ سے نہیں ہیں, وہ وسائل پہ چند لوگوں کے قبضے کی وجہ سے ہیں. وسائل تو بہت پیدا ہو رہے ہیں. تو آبادی کم ہونے سے پاکستان میں غربت کم نہیں ہوگی, غربت اور زیادہ بڑھے گی. بلکہ حقیقت بتاؤں, ہمیں تو صرف مل ہی آبادی کی وجہ سے رہا ہے, ہمارے حکمرانوں کی تو ٹکے کی پلاننگ نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہو ہمارے ماہر جو اکنامکس کے جو ماہر تھے, معیشت کے ماہر تھے, انہوں نے 50 سال پہلے بہترین پلاننگ کی ہے جس کی وجہ سے آج ہم کھا رہے ہیں, ایسا ہے؟ یہ لطیفہ اگر کوئی سنائے گا تو آپ مان لو گے اس کو؟ انگریز آج کیوں کھا رہا ہے؟ 50 سال پہلے بہترین پلاننگ ہوئی ہے جس کا ریزلٹ آج وہ دیکھ رہے ہیں. ہمارے ہاں کوئی ایسی پلاننگ ہوئی ہے؟ تو ہم صرف کس بیس پہ کھا رہے ہیں؟ آبادی کی کثرت کی وجہ سے جوانوں کا ریشو کیا ہے؟ زیادہ ہے. صرف اس بیس پہ کھا رہے ہیں. اگر ہمارے ہاں غربت یعنی آبادی کم ہوگی تو اس سے بھی ایک کھانے کا ذریعہ تھا اس سے بھی ہم جائیں گے, اور تو ہمارے کوئی پلاننگ ولاننگ نہیں ہے. اس کی اور آسان مثال, لوگ کہتے ہیں یار پاکستان میں ایک مذہبی ملک ہے پھر بھی اخلاقی برائیاں کتنی ہیں, لوگ جھوٹ بولتے ہیں, چوریاں کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, انگریزوں میں مذہب نہیں ہے پھر بھی یہ والی اخلاقی برائیاں نہیں ہیں. اس کا میں جواب دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو اخلاقی برائیاں مذہب کی وجہ سے نہیں ہے. مذہب نے کہیں بھی جھوٹ بولنے کی ترغیب دی ہے؟ کئی حدیث میں آتا ہے معاذ اللہ نقل کفر کے, جو جھوٹ بولے گا ایک حج کا ثواب ملے گا اس کو, دو نمبری کرے گا 6 حجوں کا ثواب ملے گا اس کو. لیکن جتنے چرسی ہیں حاجی ہیں, یعنی چرس کا جو بزنس کرنے والے وہ کیا ہیں؟ حاجی ہیں. تو میں 4 چرسیوں کے نام جانتا ہوں جو دنیا کے سب سے بڑے اسمگلر ہیں ہیروئن کے, سب کے نام کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے؟ حاجی. نام بتا سکتا ہوں لیکن بتاؤں گا نہیں. تو اگر ہمارے ہاں مذہب نہ ہوتا نا تو ہم اس سے بھی گئے گزرے ہوتے. یہ جھوٹ کم نہیں ہوتا اور زیادہ ہوتا, چوریاں کم نہیں ہوتی اور زیادہ ہوتی, کیونکہ ہمارے ہاں جو کچھ خیر اور خوبی اگر ہے تو وہ مذہب کی وجہ سے ہے, کیونکہ ہماری گورنمنٹ کی اخلاقی تربیت میں گورنمنٹ کا کوئی پلاننگ اور کوئی کردار गवर्नमेंट की कोई प्लानिंग और कोई किरदार नहीं है, ना स्कूलों में, ना यूनिवर्सिटियों में, कहीं भी नहीं है, जीरो है। इसके बावजूद भी बहुत हद तक हमें अखलाकी खूबियां भी हैं। अंग्रेजों ने तो 50-50, 60-60 साल कौम की तरबियत में लगा दिए, तब जाके अखलाकी बुराइयों को, जो चंद अखलाकी बुराइयां हैं वो भी, और ना वहां जो अखलाकी बुराई है वो तो मेरे और आपकी सोच से भी ऊंची है, चंद अखलाकी बुराइयां, नाइस टू मीट यू, थैंक यू, गालियां वालियां नहीं, ये जो चंद एक चीजें चल रही हैं, तो उन्होंने तो बहुत मेहनत की है। हमारे यहां मेहनत क्या है? जीरो। तो हमारे यहां अगर कोई खूबी है तो मजहब की वजह से है। अब ये बहुत फजूल दलील होगी कि पाकिस्तान एक मजहबी मुल्क है, फिर भी यहां झूठ इतना है, अंग्रेज मजहबी मुल्क नहीं है अमेरिका और वो वहां इतना झूठ नहीं है, इसका मतलब मजहब को सोसाइटी से निकाल दो। तो मजहब सोसाइटी से निकलेगा, जो थोड़ा बहुत सच बोला जा रहा है वो भी सोसाइटी से निकल जाएगा, क्योंकि सच बोलने की तरबियत तो हमारे यहां हो नहीं रही है। तो यही इसको समझ लो कि हमारे यहां मुल्क को इकोनॉमिकली मजबूत बनाने की हुक्मरानों की तरफ से कोई पॉलिसियां नहीं है, बल्कि हुक्मरानों ने अल्लाह के फजल से बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। तो अगर हमारे यहां कुछ हमें मुल्क में इकोनॉमिकली कुछ थोड़ी बहुत तरक्की नजर आ रही है, लोगों के पेट भरे हुए हैं, तो सिर्फ आबादी की कसरत। मैंने इस पर एक बाकायदा बयान रिकॉर्ड करवाया था कि आबादी की कसरत, ये जर्मनी की रिपोर्ट, आपके वहां की यूनिवर्सिटियों की रिपोर्ट पेश कर रहा हूं, इस पर मैंने पूरे रेफरेंसेस के साथ एक पूरा बयान रिकॉर्ड करवाया था कि ये नजरिया अब तब्दील हो चुका है कि आबादी ज्यादा होने से वसाइल कम होते हैं, ये बिल्कुल चेंज हो चुका है। हम पुराना सड़ावा नजरिया जो है ना वो पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटियों में। मेरा एक शागिर्द जर्मनी से बाकायदा पढ़ के आया, उसने पूरी रेफरेंस दी है वहां के प्रोफेसर क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है ना, उनमें सबसे बड़ी सोर्स ही आबादी है, बाकी चीजें उसके बाद आती हैं। तो इसलिए अगर पाकिस्तान गरीब मुल्क है तो आबादी की कसरत की वजह से नहीं है, बल्कि आबादी की कसरत की वजह से कुछ गुर्बत से थोड़ा बहुत जो पेट भर रहे हैं लोगों के। वैसे भी आप गरीबों को देख लो जाके, उनके बेटे कमा कमा के खिला रहे हैं। अगर उनके बेटे ना होते वो बूढ़ों को गवर्नमेंट खिलाती क्या? ओल्ड हाउस है यहां पे। अमेरिका तो बुड्ढों को इतना अलाउंस देता है, फ्री फोकड़ में खाते हैं बैठ के। यहां देती गवर्नमेंट कहती है हमारे पास IMF को देने के लिए कर्जा नहीं है, हम बूढ़ों को अलाउंस दें। यहां बूढ़ों को खिलाता कौन है? उनके बेटे खिला रहे होते हैं। औरतों को खिलाता कौन है? उनके मियां खिला रहे होते हैं। एक एक आदमी एक बीवी का खर्चा उठाएगा, बच्चों का खर्चा, अपने मां बाप का खर्चा, गवर्नमेंट नहीं उठा रही। ये कौन उठा रहा है? आदमी। वहां गवर्नमेंट उठा रही, आदमी नहीं उठा रहे। तो आदमी मार्केट से शॉर्ट हो गए, सब कुछ शॉर्ट। इसलिए बिल्कुल बेकार किस्म की बातें ये। तो इसलिए गरीब बात। और वैसे भी देखो, हम ये तो अकली दलाइल मैं दे रहा हूं ना, जब हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं तो हमें अकली दलील की जरूरत नहीं है, हमें अल्लाह पे तवक्कुल करना है। इस्लाम ने नस्ल बढ़ाने की तरगीब, गांधी साहब का एक बयान आया था कि एक्चुअली उस जमाने में जिहाद में लोगों को जरूरत थी तो नस्ल बढ़ाने की तरगीब दी गई। एक्चुअली करके ना गांधी साहब हर चीज का इस्लाम के हुक्म का बेड़ा गर्क कर दिया है। सिर्फ एक अखलाक रह गए गांधी साहब के पास, खानदानी, वो मैं मानता हूं। बात करने की तमीज है गांधी साहब को, बहुत से स्कॉलर्स को बात करने की तमीज नहीं है। गांधी साहब में तमीज है, मैं दूसरे स्कॉलर से कहता हूं तमीज गांधी साहब से चीज लो, इल्म उलमा से लो, तमीज से बात करता है वो बंदा, ये एक काबिल तारीफ है। बहुत से स्कॉलर ना अपना वो ही तमीज ही नहीं है उन लोगों में बात करने की, बदतमीजी से दो चार लोगों की तरफ ही जहन जाता। खैर, तो क्या कह रहा था यार, मैं किधर चला गया। तो गांधी साहब ने कहा एक्चुअली उस जमाने में वगैरह वगैरह करके, भाई साहब उस जमाने में जो गुर्बत थी ना, जिसमें नबी हुक्म दे रहे हैं सहाबी को कि तज़व्वुजुल वदूद अल वलूद, ऐसी औरत से निकाह करो जो औलाद तुम्हें कसरत से दे, ये उस जमाने में कहा जा रहा है जिसमें कुरान नाजिल होके सहाबा को ये बता रहा है ला तक़तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, अपने बच्चों को गुर्बत के खौफ से कत्ल मत करो। इतनी गुर्बत थी कि बेटों तक को कत्ल कर दिया करते थे कि यार खिलाएंगे कहां से। उन गरीबों को कहा जा रहा है कि जल्द शादी करो, ज्यादा शादियां करो और नस्ल को बढ़ाओ। आज ऐसी सिचुएशन नहीं है, होगी चंद एक घरों में, उसका आबादी से ताल्लुक नहीं है, वो वैसे ही अल्लाह की तरफ से आजमाइशें होती हैं और मुल्क की पॉलिसियां जो हुक्मरानों की वो गलत होती हैं। आज ये इस पर अमल कर रहे हैं हजार हजार गज के मंगलों में रहने वाले लोग, कह रहे हैं एक्चुअली तरबियत मुश्किल, एक्चुअली हम खिलाएंगे कहां से। अबे तुम्हारे पास तो रखने की जगह नहीं है, तो ये दिल छोटा होने की अलामत है। तभी आपको जिसके बच्चे ज्यादा हैं उसके चेहरे पे रौनक नजर आएगी, खुशियां नजर आएंगी, चाहे गरीबी होगा। और जिसके औलाद कम है ना, आपको उसके चेहरे पे रौनक नजर नहीं आएगी। जिसने अपने इख्तियार से नस्ल को रोका है उसकी बात करो, क्योंकि अल्लाह पे तवक्कुल नहीं होगा। जब तवक्कुल नहीं, दिल की खुशियां खत्म। हर वक्त असबाब पे नजर, तो जो हर वक्त असबाब पे नजर रखता है उसको खुशी के अलावा दुनिया में सब कुछ मिलता है। तो इसलिए मेरे भाई अपने घरों को आबाद करो। तो ये तो मैं दलील दे रहा था कि शरीयत की, हमारे पास तो शरीयत काफी है। तो शरीयत ने कह दिया तो हम तो अब नस्ल नहीं रोक सकते इस बेस पे। बाकी एक अकली बात भी है कि बच्चे एकदम नहीं पैदा हो जाते। ये जो लोग कहते हैं ना 10 बच्चे को खिलाएगा कहां से, भाई साहब जब 10वां पैदा होगा तो पहला बड़ा हो चुका होगा, वो बाप के साथ कामों में हाथ बटा रहा होगा। ये कोई खरगोश के बच्चे थोड़ी है जो ठा ठा करके 6-6 पैदा हो रहे हो, या मेंढक के बच्चे थोड़ी है जो बरसात में टट टट करके एकदम इतने सारे पैदा हो गए। अब मैं जब बताता हूं ना, मेरे माशाल्लाह 18 लोग कहते हैं अभी 18 कहां रखे होंगे इसने। अब भाई जान 18वां बड़ा होकर कमाने लगा है मेरा बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा हो गया है वो अब हमारा दस्ते बाजू बन गया, अल्लाह बरकत दे उसमें। तो नजर नहीं लगा देना, मुझे गुस्सा बहुत आने लगा आजकल। तो बेटे जैसे जैसे बड़े होते हैं वो क्या करते हैं, वो पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, उसको कहा कहते हो कुछ कमा यार तू, पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा तो कब तक पिटेगा। तो सही है ना, तो वो तो बेटियां जो है वो घरों की हो जाती हैं अपने, उनकी रुख्सती हो जाती है, उनकी जिम्मेदारी किसके, कौन उठाता है। अब जब अल्लाह ने, मैं शो के लिए ये मिसालें नहीं देता, समझाने के लिए कि यार मैंने जो दावे किए थे अल्लाह ने मुझसे प्रैक्टिकल करके दिखाया है, हवाई बातें नहीं है। तो हमारी तो कोई बहुत बड़ी आमदनी नहीं थी भाई, इसी में हम पले बड़े हैं, तो बच्चे भी उसमें हमने पल गए, बड़े हो गए, खा लिया पी लिया। और गरीब का बच्चा ज्यादा अच्छा पल रहा होता है अगर तरबियत सही हो, मालदार के बच्चे तो खा खा के बिगड़ते हैं, वो तो बाप की खिदमत भी नहीं कर रहे होते। मैं देख रहा हूं ना मालदारों के घरों के जो हालात हैं, हमसे मिलते हैं, अल्लाह किसी का राज फाश नहीं करना मैंने, लेकिन जो हालात हैं कहते हैं यार हमने इन कमबख्तों को जना क्यों। कहते हैं सिटी स्कूल बीकन हाउस में करोड़ों लाखों रुपए खर्च करके इन कमबख्तों को पढ़ाया, आज हमसे तमीज से बात नहीं करता, गर्लफ्रेंड के बाजू में जाके बैठता ही है। तो वो दो बच्चे जो तरबियत के लिए निकाले थे ना उन्होंने, उनकी भी ये तरबियत होती है। सबकी बात नहीं कर रहा, सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन बॉसों का हाल खराब है। और फिर कल मैंने एक इलाका विजिट किया, कल की बात है यार, 500-500 गज के बंगले थे, कल ही की बात है, सच्ची मुच्ची के कल की बात कर रहा हूं। 500-500 गज के बंगले, बंदा ही नहीं है अंदर। मां बाप के 2 बच्चे थे, घर बहुत बड़ा बना लिया उन्होंने, एक अमेरिका में बैठा हुआ है, दूसरा पता नहीं कहीं जापान गया हुआ है। बुड्ढा बुड्ढी एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। अबे इससे तो वो झोपड़ा अच्छा है यार, बुढ़ापे में बच्चे तो हो आपके पास, नहीं आई तो ऐसे बंगले का तुमने क्या करना है। बेडरूम उस पर फखर हो रहे, 4 बेड DD, 5 बेड DD ये चला रहे हैं ना, 5 बेड DD, 4 बेडरूम DD, वो है ना वो स्टेट एजेंटों की जमान पे। तो मैंने कहा DD का क्या करना है, घर में बंदा है नहीं यार, जिन भूत रख लो यहां लाके, दीवारें बड़ी बड़ी, वॉशरूम इतने बड़े बड़े, वो फुटबॉल खेल रहे आदमी वॉशरूम में जाके, उस पर फखर कर रहे हैं। अब ये नेचुरल लाइफ नहीं है मेरे भाई, तमीज से इंसानों की तरह जिंदगी गुजारो, अल्लाह पे तवक्कुल करो, अल्लाह खिलाने वाला पिलाने वाला, नस्ल बढ़ाओ, बेटे बहुएं। मौलाना तारिक मिल साहब सफर करते हैं माशाल्लाह, सुने बेटे बहुएं दामाद पोते नवासे सारे जा रहे होते हैं, अच्छा लगता है कि नहीं लगता, कहीं भी जा रहे हो। मेरे नाना की मैं अक्सर वाकया बताता हूँ, हमारे नाना की औलाद थी, बेटे बहुएं, उम्र भी बड़ी लंबी माशाल्लाह, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। उनसे कोई पूछता, इनायतुल्ला नाम था हमारे नाना का ना, मौलवी साहब भी थे, वो आर्मी में थे लेकिन मौलाना थे। तो उनसे किसी ने पूछा मौलवी साहब घर में खैरियत है, कह रहे वो कहते थे खैरियत कमबख्तों के यहाँ होती है, जिनके कोई कमबख्तों के यहाँ हो ही नहीं, खैरियत ही खैरियत होगी उनके यहाँ। कह रहे हमारे तो बेटे बेटियां पोते नवासे, कभी किसी के सर में दर्द है, बहू का मूड ऑफ है, कोई दामाद थोड़ा आड़ा परेशान निकला हुआ है, ठीक है ना, किसी बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, तो हमारे तो घर में अफराद हैं भाई, तो कुछ ना कुछ खुशियां भी चलती हैं, गम भी चलते हैं, खैरियत उनके यहां होती है, बंदा ही नहीं है। अब आप डिफेंस में 1000 गज के बंगले में जाओगे, खैरियत के अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा। एक बूढ़ा वहां खैरियत से बैठा होगा, एक बुढ़िया वहां पे खैरियत से बैठी भी होगी, शुगर की टैबलेट रखी भी होगी, ब्लड प्रेशर की मशीन है, क्योंकि पैसा बहुत है, डॉक्टर हर वक्त दाएं बाएं, वो चेक करके निकल लेंगे वो, ये क्या कर रहे हैं ऐसी खैरियत का मेरे भाई। तो इसलिए मैं पूरी सोसाइटी से लड़ रहा हूं आपके फायदे के लिए, मेरा कोई फायदा नहीं है इसमें। नस्ल बढ़ाओ, खुशियां पैदा करो, और गोरों की हालत देखो काबिल तर्स है, खुदा की कसम रोना आता है उनको देख के, बहुत रोना आता है कि यार ये क्या है, इन बेचारों का हुआ क्या इनके। तो उनको ऐसी, उनकी औरतों का दिमाग खराब हुआ है ना, उनकी औरतों की जिंदगी अभी बर्बाद, نس وقت بچے نہیں پیدا ہوتے, بڑھاپے میں بیچاریوں کی زندگی خراب ہوتی ہے. شوہر کی محبت بھی بیوی کو پورے طور پہ جب ہی ملتی ہے جب اس کی اولاد ہو. آدمی بیوی کو شروع میں دلہن تو دلہن لگتی ہے اچھی, اس کے بعد وہ اچھی اس لیے لگتی ہے آپ کے بچوں کی ماں ہے. دلہن تو پرانی ہو جاتی ہے, دلہا بھی تھوڑا دنوں میں پرانا ہو جاتا ہے. وہ جو جذبات ہوتے ہیں نا میاں بیوی کے, آئی لو یو, اور وہ چار دن کے بعد ختم. اس کے بعد تو بھائی میرے بچے کی کیا ہے یہ, اتنے بچوں کو ناشتہ بنا کے دیتی ہے, اتنے بچوں کو تیار کرتی ہے, اتنے بچوں کی خوشیوں میں میرے ساتھ شریک ہوتی ہے, غم میں میرے ساتھ. اور عورت بھی اس لیے اپنے شوہر سے, میرے اتنے سارے بچے بیٹے بہویں داماد میرے میاں کے بھی ہیں, یہ جیسے میرے ہیں میرے میاں کے بھی ہیں. تو یہ بھی ذمہ داریاں ڈیوائڈ ہوئی ہوئی ہیں. ان کا ریلیشن اولاد کی وجہ سے بنتا ہے. بچہ شارٹ طلاق کا ریشو بڑھ جاتا ہے. جہاں بچے تبھی گوروں میں طلاقیں دیر دنادن طلاقیں. آج طلاقوں کا ریشو کیوں بڑھ گیا ہے؟ نسل ختم, نسل ختم ہو گئی, اس سے طلاقوں کا ریشو بھی بڑھ گیا ہے. اس لیے یہ سب سے بیکار قسم کی باتیں ہیں, فضول. اچھا میرے بھائی, حنفی کی نماز پر ایک اور اعتراض کیا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کی نماز قادیانیوں نے کے طریقے والی ہے اور ہماری نبی والے طریقے والی ہے. قادیانی بھی فقہ حنفی کے مطابق چلتے ہیں. قادیانی اگر فقہ حنفی کے مطابق چلتے تو نبی کو آخری نبی مانتے. فقہ حنفی کی تمام عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. باقی وہ فقہ حنفی کو فالو جو زبان کی حد تک کرتے ہیں نماز, وجہ اس کی ہے کہ قادیانی جو مذہب ہے وہ ہندوستان میں پھیلا ہے, اور اس وقت ہندوستان میں 99.999% حنفی تھے, سمجھ رہے ہو. تو ان کی نمازیں چینج نہیں ہوئی ہیں. تو یہ تو قدیم فقہ, جتنے بھی آج اہل حدیث بھی ہیں آپ ماضی میں جاؤ گے تو سب حنفی نکلیں گے, باپ دادے ان کے. تو جو اسلام بر صغیر میں آیا اور ایران میں آیا, جو اہل سنت والجماعت کی بات کر رہا ہوں, وہ فقہ حنفی ہی کی شکل میں آیا ہے. ملیشیا میں فقہ شافی آیا, اس پہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. تو قدیم جو اسلام آیا ہے وہ تو حنفی فقہ ہی آیا ہے. باقی جتنے بھی ہیں وہ بعد میں آئے ہیں, 100-150-200 سال سے زیادہ پرانی ان کی تاریخ نہیں ہے. اور کمال کی بات ہے, وہ اپنے آپ کو فرقہ نہیں کہتے, ہمیں فرقہ کہتے ہیں. بھائی جو چیز بعد میں آئے وہ فرقہ ہوگی نا, جو شروع سے آئی ہے وہ تھوڑی فرقہ ہوگی. جو نئی چیز آئے گی مارکیٹ میں وہ کیا ہوگی؟ اس پہ پھر وہ ایک اشکال مشہور کیا جاتا ہے. ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں, امام ابو حنیفہ کو یا فقہ حنفی کو نہیں مانتے. اس کا مطلب فقہ حنفی تورات اور انجیل سے نکالا گیا ہے. آپ جو چیز نکال رہے ہیں وہ کہاں سے نکل رہی ہے؟ قرآن حدیث سے. تو یہ لطیفہ ہو سکتا ہے بہترین, اس سے زیادہ اس کی ویلیو نہیں ہے. باقی نماز میں یہاں بھی ثابت ہے, یہاں بھی ثابت ہے, رفع الیدین کرنا بھی ثابت ہے, نہ کرنا بھی ثابت ہے. وہی بات میں کرتا ہوں جو ڈاکٹر ذاکر نائک اپنے ہر اسپیچ میں کر رہے ہیں. بھائی ہر طرح سے نماز ہو جاتی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا میرے والد شافعی تھے. کیا مطلب؟ ڈاکٹر ذاکر نائک یہ کہہ رہے تھے کہ میرے والد گمراہ تھے. انہوں نے بتایا کہ شافعی فقہ بھی کیا ہے, ٹھیک ہے, فقہ حنفی بھی کیا ہے, ٹھیک ہے. امت میں اتحاد کا وہ طریقہ تو سوٹیبل ہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک لے کے چل رہے ہیں. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ میں ٹھیک ہوں باقی سارے کیا ہیں, غلط ہیں. جب آپ یہ بات کرتے ہو اور ڈاکٹر صاحب تو بار بار میں بھی ٹھیک ہوں میں بھی ٹھیک ہوں, لیکن کمال کی بات ہے نا, فرقہ پرست لوگ ان کی اس بات سے بھی فرقہ نکال رہے ہیں. نا وہ بار بار کہہ رہے بھائی میں بھی ٹھیک ہوں, یعنی فقہی مسائل میں کہہ رہے ہیں, عقیدے میں نہیں. عقیدے میں ایک ہی ٹھیک ہوگا جو بیسک عقیدے ہیں, شرک ٹھیک ہوگا یا توحید ٹھیک ہوگا. ختم نبوت ٹھیک ہوگی تو پھر قادیانی ٹھیک نہیں ہوگا. اس کا میں بھی کا مطلب یہ نہیں کہ میں بھی ٹھیک ہوں قادیانی بھی ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. کچھ باؤنڈری اللہ نے کھینچ دی ہے. تو فروعی مسائل میں جو اختلاف ہوگا اس میں یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. اچھا میرے بھائی, سوال مکمل پڑھیں. میری ڈگری مکمل, میرے کو مشورے دے رہا ہے. دیکھو بھائی میری ڈگری مکمل ہو چکی ہے. میں نے ڈاکٹر اسرار اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی زندگی سے سبق لیا ہے کہ انہوں نے اپنے پیشے کو چھوڑا اور سب کچھ دین پہ لگا دیا, اللہ کے لیے کچھ چھوڑا اور اللہ نے اس سے بہتر عطا کر دیا. میں بھی سب کچھ دین کے لیے قربان کرنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ زیادہ کام لے. دیکھو بھائی بات یہ کہ ہر آدمی ڈاکٹر اسرار نہیں ہوتا, ہر آدمی ڈاکٹر ذاکر نہیں ہوتا. اصولی طور پر یہ جب انسان انٹر کر لے نا, انٹر تک تو تعلیم اس زمانے میں سب کے لیے ضروری ہے, تو بالکل ہی فارغ ہوتا ہے. اس لیے جامع ترشید والے علماء کو انٹر لازمی کراتے ہیں. انٹر کے بعد آپ نے پلاننگ کرنی ہے کہ میں نے بننا کیا ہے. عالم بننا ہے دین کا علم تو پھر مکمل اس میں جت جاؤ, ڈاکٹر بننا ہے تو مکمل اس میں جت جاؤ. ورنہ نارملی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک فیلڈ میں مہارت حاصل کر کے دوسری فیلڈ میں آتے ہو تو نہ ادھر کے رہتے ہو اور نہ ادھر کے. یہ چند لوگ ہوتے ہیں اس ٹائپ کے, ڈاکٹر ذاکر نائک جب غیر معمولی حافظہ اللہ نے دیا وہ ادھر آئے اور وہ ایک دم ایکسٹریم لیول پہنچ گئے, یا ڈاکٹر اسرار صاحب نے قرآن کے لیے وقف کر دیا, پھر اس نے معلومات لی مطالعہ کیا. हर आदमी के पास ना इतने वसाइल होते हैं ना इतना टाइम होता है, फिर बीवी बच्चे भी होते हैं, टाइम पे शादी भी करनी होती है, तो उनको खिलाना पिलाना भी होता है। इसलिए नॉर्मल लोगों के लिए यही है कि वो पहले फैसला कर ले किधर को जाना है। हाँ, फिर भी अगर किसी ने बैचलर के बाद भी कुछ बनना है, मास्टर के बाद भी कुछ बनना है, तो फिर जामे तो रशीद ने उसका एक सेटअप बनाया हुआ है और उससे बहुत से लोगों ने अमल किया है कि भाई 4 साल का आलिम का कोर्स रखा हुआ है, उसमें अरबी ग्रामर सिखाते हैं, आपको कुरान की तफसीर पढ़ाते हैं, हदीस पढ़ाते हैं, फिका पढ़ाते हैं और उसूल फिका पढ़ाते हैं, जो इस्लाम के बेसिक जो आलिम बनने के लिए बेसिक उसूल है। तो वो 4 साल में पहले देखते हैं कि इसमें सलाहियत भी है या नहीं, तो वो एक दरमियानी रास्ता है। उसको करने के बाद भी मैंने देखा बहुत से लड़के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शागिर्द हैं जो आलिम भी बने और फिर वो दीन दुनिया दोनों में बहुत अल्लाह ने उनको महारत दी, लेकिन उसके लिए फिर उनकी स्ट्रगल, उनकी मेहनत ज्यादा होती है। अगर ज्यादा मेहनत ना हो या दिमाग ज्यादा नहीं है तो फिर वो भी पूरे तौर पे ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। तो ऐसे ये जामत रशीद ने एक बेहतर ऑप्शन दिया है आपके लिए, वरना आप अपने शोबे में रह के भी दीन के लिए अपने आप को वक्फ कर सकते हैं, अपने शोबे को छोड़ने की जरूरत नहीं है। देखो, इस्लाम को तमाम शोबों की जरूरत है। ये नजरिया गलत है कि इस्लाम को सिर्फ मौलानाओं की जरूरत है, इस्लाम को ताजरों की भी जरूरत है, डॉक्टरों की भी जरूरत है, इंजीनियर्स की भी जरूरत है, साइंसदानों की भी जरूरत है। हमारे उस्ताद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में ये बात कहा करते थे कि अगर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने मेहनत ना की होती, जबरदस्त साइंटिस्ट ना बना होता और पाकिस्तान को एटमी ताकत ना बनाया होता, तो मेरे उस्ताद अपनी दाढ़ी पकड़ के कहते थे आज हमारी दाढ़ियां महफूज ना होती। अब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साइंटिस्ट बने, उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाऊंगा, उस वक्त उनको ख्याल आता है मैं डॉक्टर इजरार बन जाऊं या डॉक्टर जाकिर नाइक बन जाऊं। वो बंदे ना बंदे पाकिस्तान की ऐसी की तैसी अब तक हो चुकी होती। एक ही चीज हमारे पास रह गई है, ढंकी बम, एक आबादी और एक बम, ठीक है ना, और कुछ बचा नहीं है। दो चीजों को संभालो, बाकी भी करो, खाली इस पे गुजारा नहीं करो, लेकिन ये दो चीजें किसी हद तक बच गई है खानदानी हमारे पास। एक आबादी की कसरत से भी मुल्क अस्करी लिहाज से बड़ा स्ट्रांग होता है। देखो, चींटी का जब सांप से मुकाबला होता है ना, ताकतवर कौन है? सांप। लेकिन जीतता कौन है? चींटियां। क्योंकि चींटियां एक आएगी, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, फिर चींटियों की इतनी फौज आती है ना, सांप बेल आखिर, क्योंकि चींटियां खत्म नहीं होती, इतनी जमा हो जाती हैं, वो किस किस को मारेगा सांप, मार मार के थक जाता है, एक मरती है 10 पीछे से तैयार खड़ी भी होती है। तो ये आप किसी आर्मी के माहिर एक्सपर्ट ऑफिसर से पूछो कि जब आबादी का मुकाबला ताकत से होता है ना, तो आबादी अगर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है आबादी, तो आबादी जीतती है हमेशा। जब आबादी का मुकाबला फोर्स, तो ताकत भी जरूरी है और आबादी भी जरूरी, दोनों चीजें जरूरी हैं। और ये जो लोग मेरे इस तरह के बयानात के नीचे कमेंट्स लिखे होते हैं, अबे इस मौलवी को क्या पता, यूनाइटेड नेशन ने सबसे बड़ा मसला आबादी को करार दिया हुआ है इस वक्त, तो मैं उनसे कहता हूं अबे इस कमेंट्स करने वाले को क्या पता, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट ये है कि दुनिया में जिस स्पीड से ग्रोथ रेशो होना चाहिए वो खतरनाक हद तक कम हो गया है, गिरा नहीं है ग्रोथ रेशो, तो अभी भी आबादी बढ़ रही है, वो कम हो गया खतरनाक हद तक, जिससे बड़े मसाइल खड़े होंगे। तो ना तुम्हें यूनाइटेड नेशन का पता और ना तुम्हें, वो लतीफा याद आ रहा है लेकिन मुनासिब नहीं है, ये क्या लिखा हुआ, अब लड़की के घर वालों से शादी की बात पक्की। हाँ, तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का मैं बता रहा था, तो आप जिस शोबे में हो यार उसी में दीन की खिदमत करो, आप अच्छे डॉक्टर बन के भी कर सकते हो, मुल्क का नाम रोशन करो, इस्लाम का नाम रोशन करो, गरीबों का फ्री इलाज करो, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। लड़के के घर वालों से शादी की, लड़की के घर वालों से शादी की बात करने के बाद घर वालों का लड़की को हार पहनाना कैसा है इस तरह, इनको तोहफा देना कैसा है, मैं अगले साल मदरसे में फरागत। भाई जब बात पक्की हो जाए तो हार फैलाना नेचुरल है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बात पक्की हुई खुशी होती है, इंसान कहता है चलो भाई मिठाई लाओ, ये इतना भी खुश करने की जरूरत नहीं है शादी को, मंगनियों के हम कायल नहीं है, हम कहते हैं बस अब निकाह की तारीख तय करो, ये मंगनियां मंगनी ठीक नहीं, बाकी बात तय हो गई तो मिठाई भी खिलाई जा सकती है, मुबारकबाद भी दी जा सकती है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ऐसा भी ना हो कि पता ही नहीं चला कि जनाजा उठ रहा है या इनके यहां बात पक्की हो रही है। मेरे अगले साल मदरसे से फरागत है और शादी का भी इरादा है, तो जरिए आमदन के लिए कुछ मशवरा दें। जरिए आमदन के लिए ताजिरों से मशवरा लो, जो जिसकी फील्ड है मशवरा हमेशा उससे लिया जाता है। हजरत मुफ्ती साहब मेरे, हाँ वो 18 बच्चे मैं ये बता रहा था, जिसके भी बच्चे पैदा होते हैं इकट्ठे नहीं हो जाते, 10 बच्चे 15 बच्चे, तो जब 15वां होता है तो पहला क्या होता है, वो बड़ा हो चुका होता है। तो ये भी कुछ डायलॉग होते हैं, देखने में बड़े लग रहे होते हैं, अबे 10 बच्चे मैं बरसाती मेंढकों की तरह बच्चे पैदा हो रहे हैं, खिलाओगे कहां से? भाई साहब 10 एक हो ही नहीं सकते, जुड़वां होते हैं ज्यादा ज्यादा, कोई करोड़ों में एक है तिरवां हो जाए, तीन हो गए इकट्ठे, वरना बहुत ज्यादा हो गए जुड़वां हो जाएंगे, तो बाकी 8-10 होंगे। तो कुदरत की तरफ से भी 2 बच्चों में खुद बखुद ऑटोमेटिकली वक्फा होता है। लोग कहते हैं ना हर साल बच्चा हर साल बच्चा, भाई कुदरत की तरफ से हर साल होता ही नहीं है, अल्लाह ताला ने ये प्लानिंग खुद से की हुई है, हर साल मुमकिन ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। मां बच्चे को दूध पिलाती है तो वो मेंसेस नहीं आते तो हमल नहीं ठहरता, ये कुदरत की तरफ से सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हुए हैं। तो कुदरत के कामों में टांग अड़ाने की कोशिश मत करो। हम समझते हैं अल्लाह तो पैदा करके भूल गया, अब सारा काम हमने ही करना है। इंसान को ये इजाजत है कि जानवरों की प्लानिंग करे कि कितने पैदा करने हैं कितने मारने हैं, क्योंकि जानवर इंसान के लिए मुसख्खर हैं। तो जो आपका खादिम होता है आप उसकी प्लानिंग करते हो, इंसान इंसान के लिए मुसख्खर नहीं है। इंसान इंसानों को नहीं मशवरा देगा कि कितने बच्चे पैदा होने चाहिए नहीं होने चाहिए, ये जुल्म है। ये इंसान से ऊपर की जात प्लानिंग करेगी, वो कौन है? अल्लाह है। तो इंसान के लिए इंसान को ये प्लानिंग करके गवर्नमेंट को प्लानिंग करना कि आप 2 से ज्यादा पैदा नहीं कर सकते, ये बदतरीन जुल्म है इस्लाम में। कि गवर्नमेंट कौन होती है भाई आपके बारे में फैसला करने वाली कि आपने करने के नहीं करने? गवर्नमेंट भी इंसान है, आप भी। तो गवर्नमेंट मैनेजमेंट के लिए तो कानून साजी कर सकती है, इसका मैनेजमेंट से ताल्लुक नहीं है। इसके लिए तो भाई आप इंसानों को दुनिया में आने से रोक रहे हो, जिसके लिए इस कायनात को बनाया गया है। आप कह सकते हो रोक नहीं रहे हम, जो दुनिया में है उनको अच्छी जिंदगी देने के लिए कर रहे हैं। जो दुनिया में है वो बूढ़े हो रहे हैं, उन्होंने दुनिया से निकलना है, या तो रुक गई होती ना जिंदगी, रुकी भी थोड़ी है, पुराने जाएंगे नया माल मार्केट में आएगा तो वो चलता रहेगा सिलसिला, तब यहीं थोड़ी रहेंगे। मुफ्ती साहब मेरे वाले साहब आपके बहुत मुतकीद है, मेरे वाले साहब आपके तमाम बयान सुनते हैं खुदों में, जिसमें आप वालदैन की कदर की तरकीब देते हैं, वो बयान भी बहुत शौक से सुनते हैं, और इनके बयान लिंक्स होलसेल रेट पर क्या लिखकर सेंड करते हैं, मगर इन बयान से ऐसे राह फरार इख्तियार करते हैं जैसे मिर्जा जहलीमी ने आपसे मुलाकात से राह फरार इख्तियार की, जिसमें आप वालदैन को औलाद की जल्द शादी की तरकीब देते हैं। आप अपने मतलब के बयान सुन रहे हैं, जो अपने अगेंस्ट जा रहे हैं वो नहीं सुन रहे। मेरे भाई मैं माँ बाप को औलाद की जल्दी शादी की तरगीब देता हूं, लेकिन उसमें मैं ये बताता हूं कि बेटा अगर कमा रहा है तो करो उसकी शादी, नहीं कमा रहा तो फिर तरगीब नहीं देता मैं। फिर उस सूरत में तरगीब देता हूं जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखें कि इसमें कोई सलाहियत है, अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है, पढ़ाई को फुल फोकस कर रहा है, फिर ठीक है। अगर आपको जरा सा भी लगे कि यार पता नहीं ऐसा ना हो शादी करके मेरे ऊपर बोझ ना बन जाए, तो फिर नहीं करो भाई, क्योंकि ऐसे वाकयात बहुत आए हैं। बाप ने दिल बड़ा करके बेटे की अपने खर्चे पे शादी की, बेटे ने कहा शादी तो हो गई है, उसने कमाने वाले मेरे बयानात नहीं सुने, बच्चे पैदा करने वाले सुन रखे थे उसने। बच्चे दे दनादन स्पीड से पैदा हो रहे हैं, खिला कौन रहा है उनको? अब्बा। वो कह रहा है यार कमबख्त मैंने पहले तुझे पाल पोस के बड़ा किया, तेरी बीवी को भी मैं खिलाऊं, तेरी बच्चों को भी मैं खिलाऊं, और जब दूसरे के खर्चे पे बच्चे पलते हैं तो स्पीड थोड़ी और ज्यादा, तो स्पीड ही स्पीड है ना, कोई स्पीड ब्रेकर हो ही नहीं आगे। तो फिर अब्बा फिर मेरे पास आता है रोता हुआ, तो मैं कहता हूं आपको पहले बच्चे को परखना चाहिए कि ये क्या है, इसके अंदर कुछ ऐसा तो नहीं पड़ जाएगा, ये अगर बच्चा बात सलाहियत है, जो कि आजकल मार्केट में थोड़ा रेशो कम चल रहा है, तो फिर जरूर करो अपने खर्चे पे, फिर अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल करो, लेकिन अगर थोड़ा सा भी डर हो तो फिर नहीं करो मेरे भाई। और बार दफा ये भी डर होता है कि मैंने अपने खर्चे पे बच्चे की शादी कर दी तो बहू जब इसी घर में आएगी तो मेरी बीवी से उसकी लड़ाइयां होंगी, मां सास बहू की आजकल बनती कहां है, तो बाप इसलिए भी बार दफा ताखीर करता है कि बेटा करेगा लेकिन दूसरे घर में, अपने लिए घर का इंतजाम कर। तो बार दफा ये भी डर होता है बाप को कि यार इस घर में आ गए जहन्नम बन जाएगा घर, क्योंकि सास बहू को एक जगह रखना ऐसे है जैसे फिलिस्तीनी और इसराइली को आपने एक साथ बिठा दिया, तो ये ऐसा है आजकल। तो कहीं अच्छी भी सासें होती हैं जो मेरा बयान सुन रही हैं, बहुएं भी बहुत अच्छी होती हैं, बात उनमें फिर यही है कि ठीक है फिर कर लें, लेकिन आजकल ऐसा कहां होता है, बहुत शॉर्ट चल रहा है हमारा। ज्वाइंट फैमिली में रहने में बहुत बरकतें हैं, लेकिन जब दिल जुड़े हुए हों, बहुत फायदे हैं ज्वाइंट फैमिली के, लेकिन दिल कहां है आजकल जुड़े हुए? 2 बहनें इकट्ठी नहीं रहती हैं, सास बहुएं रहेंगी यार, शो मार रहे थे मेरे सामने आके, मेरी चारों बीवी एक साथ घर में रहती हैं, मुझे बता रहे होते हैं, मैं कहता हूं फिर तू कहां रहता है, तू रोड पे सोता होगा, तो हमारे सामने शोनी मारा करो भाई, जो हकीकत है ना वो बयान किया करो। 4 बीवियां घर में इकट्ठी होते हैं लाखों में कोई एक आध होता होगा, लेकिन नहीं रह सकती, दो नहीं रहती हैं। तो मुझे पता होता है झूठ बोल रहे हैं। मुफ्ती साहब मेरी उम्र 21 साल है, मैंने घर वालों से छुप कर दो शादियां की। ओए होए, अब घर वाले तीसरी शादी करवाना चाहते हैं लेकिन दोनों बीवियों की इजाजत नहीं है। जो घर वाले तीसरी करवा रहे हैं ना, उस तीसरी को बता दो कि मेरी पहले से दो हैं। बाज हवा घुन्ने बन के उसको बताते नहीं है, वो समझ रही होती है पहली हूं, ये हराम है, नाजायज है, झूठ है, धोखा है। समझते हो, धोखा देना जायज नहीं है। वो ये समझ रही है कि आप कमा रहे हैं, उसको बता दो भाई मैंने दो की भी है। बेशक बाकी दुनिया को ना बताओ, उसको जरूर, बीवी को जरूर बताओ कि मेरे पहले से निकाह में दो बीवियां हैं, आपको तीसरी भी तो आ रही हो, आप ये ध्यान में रखना। तो फिर करना होगा करेगी, नहीं करना होगा इनकार कर देगी। धोखे में रख के जायज नहीं है ये। बाकी ये कि दोनों बीवी इजाजत नहीं दे रही, तो अब्बा से इजाजत लिए बगैर जब दो कर ली है, अम्मा को लिफ्ट नहीं कराई, तो तीसरी के लिए दो को क्यों लिफ्ट करा रहा है भाई तू? अस्तगफिरुल्लाह, वो दो मुझे बद्दुआएं देंगी। शरीयत में अदल जरूरी है। तीन शादियां आप इस शर्त के साथ करें, तीनों को रिहाइश अलग देंगे आप, और तीनों के साथ अदल का मामला करेंगे, उनका बेसिक हकूक आप पूरे उठाएंगे। अगर आप ये करेंगे तो करो फिर ऐसी की तैसी सोसाइटी की, फिर तो जरूरी है करना। मेरा नाम मोहम्मद कामरान है, मेरे वालिद का इस महीने इंतकाल हो गया, दिल से दुआ है अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए। उस्मान अहमद नाम था, दिल से दुआ है जी अल्लाह ताला मगफिरत फरमाए, उनके दर्जात को अल्लाह ताला बुलंद फरमाए, और अल्लाह लवाहिकीन को सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए। और तो कोई सवाल नहीं है भाई। YouTube की अर्निंग से मुतालिक मेरा एक क्लिप अभी चल रहा है, उसको ज्यादा से ज्यादा वायरल करें, बहुत मुदल्लल मुफस्सल है, क्योंकि इसको मसले को बहुत उठाया जा रहा है मीडिया पे, तो उसका नतीजा बहुत से लोग कमाते हैं हराम समझ के, फिर वो और भी हराम कामों में पड़ते हैं, उस कहते हैं छोड़ना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तो क्या है, हलाल है हराम है, उसके दलाइल क्या है जवाब के, उस पर जो क्लिप है ना, उसको आपने ज्यादा से ज्यादा वायरल करना। जुम्मे को मैंने बयान किया था, उसको थोड़ा सा मुख्तसर किया है कटिंग एडिटिंग करके। सुभानक अल्लाहु व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका। कोई सवाल पूछना है भाई किसी ने? मीजान कफाला एक तकाफुल इस्लामिक इंश्योरेंस प्लान है, जिसके जरिए सारिफिन अपने मुस्तकबिल के मंसूबों, जैसे कि अपने बच्चे की तालीम या शादी, हज पर जाना, बुढ़ापे की मनसूबाबंदी वगैरह के लिए बचत कर सकते हैं। मीजान कफाला किसी भी वक्त आसानी से सरमाया बाहर निकालने के ऑप्शन के साथ बैंक इंश्योरेंस का शरीयत के मुतबादिल है। यानी यह तकाफुल शरीयत के मुताबिक, देखो तकाफुल में उलमा का इख्तलाफ है। हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब बहुत बड़े स्कॉलर हैं, आप सबको पता ही है, माली मामलात में दारुल उलूम कुरंगी के उलमा भी वो इसको जायज कहते हैं, लेकिन हमें अभी तक इसके जायज होने पर इत्मीनान नहीं है। अब यहां देखो, मुझे तो तकाफुल कंपनी से ऑफर भी आई है, अच्छी तनख्वाहों के साथ ऑफर भी आई है कि ये वगैरह वगैरह, लेकिन मैंने उनसे यही कहा कि मेरी ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोग कहते हैं उलमा असल में जब अपना फायदा होता है तो जायज है, दूसरों के लिए नाजायज है, तो ये बताने के लिए आपको कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है। कोई चीज हमारे फेवर में जा रही हो या हमारे अगेंस्ट जा रही हो, अगर वो जायज है तो जायज है, चाहे हमारे अगेंस्ट भी जा रही हो, नाजायज है तो नाजायज है, चाहे वो हमारे फेवर में जा रही हो। तो हमें इससे अल्हम्दुलिल्लाह फर्क नहीं पड़ता, दलाइल को देखा जाता है। तो हमारी राय में तकाफुल पे हमें कुछ इश्कालात हैं, तहफुजात हैं। दारुल उलूम कुरंगी से हमारी जामत रशीद के उलमा की मीटिंग भी हुई, तो होता है बाज दफा बहस मुबाइसे के बाद इत्तेफाक हो जाता है, बाज दफा इत्तेफाक नहीं होता। जब तक इंसान दुनिया में रहेंगे राय का इख्तलाफ रहेगा, तो ऐसी सूरत में फिर यही हुक्म है कि जब बड़े मुफ्तियाने किराम का इख्तलाफ हो जाए ना किसी मसले में, तो मैं तो बड़ा नहीं हूं लेकिन जामत रशीद के जो बड़े सीनियर मुफ्तियाने किराम है, हजरत मुफ्ती तकी साहब के मुकाबले में तो हम कुछ भी नहीं है, कोई हैसियत ही नहीं है, मुफ्ती नहीं है उनके मुकाबले में, हम क्या हमारी हैसियत होगी। लेकिन जो बड़े उलमा है जामत रशीद के, क्योंकि तकाफुल पे मैंने खुद रिसर्च बहुत ज्यादा की है, इसमें घुस के मैंने इस पर रिसाला भी लिखा है, तो वो रिसाला दारुल उलूम गया भी था, पढ़ा भी गया, हजरत मुफ्ती तकी साहब ने उसकी बड़ी तारीफ भी की और फरमाया कि इतना जानदार तकाफुल पर मैंने पहली दफा एक तहरीर देखी है, तो नाचीज की तहरीर थी, कई साल पहले की बात है वो। तो फिर इसमें जामत रशीद के जो सीनियर मुफ्तियाने कराम है, मुफ्ती मोहम्मद साहब हैं जो मुझसे सीनियर हैं, इसी तरह मुफ्ती हुसैन खलील खलील साहब वो भी मुझसे सीनियर हैं, तो इन हजरात को भी तहफुजात हैं। तो इसलिए हमारा फतवा अभी तक ये नहीं है कि तकाफुल जायज है, लेकिन दारुल उलूम के उलमा हैं वो उनको जायज समझते हैं। तो जब ऐसे बड़े उलमा का ही, अहले हक उलमा का ही इख्तलाफ हो जाए, तो फिर अवाम के पास दो ऑप्शन होते हैं, एक एहतियात वाला पहलू है कि भाई एहतियात करो बच जाओ, और एक गुंजाइश वाला पहलू है। गुंजाइश ये है कि ठीक है भाई, वो भी उलमा है, वो जब जायज कह रहे हैं तो उनकी एक तहकीक है, तो अगर कोई अमल कर भी लेता है उनकी तहकीक पर अमल करते हुए तो हम उसको गालियां नहीं देते, ठीक है ना, उसको हराम खाने वाला नहीं कहते हम। मुफ्ती आम आदमी के लिए तो अब इसके अलावा कोई दलील नहीं है ना, किसी मुफ्ती के फतवे को ही फॉलो करेगा। हमें बहरहाल इस पे अभी तक तहफ्फुज़ात हैं, कुछ इश्कालात हैं, जिसके अभी हमारे ख्याल है कि हमें इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिले, उनको इत्मीनान है उसके जवाब पर, तो ये इसका जवाब है, समझते हो। इसलिए मैं बचता हूं तकाफुल से। कोई कहता है, मैं कहता हूं अगर भाई आपको हमारी राय पे एतमाद है तो आप एहतियात करें, और अगर कोई दारुल उलूम को फॉलो करता है तो भी ठीक है। इख्तलाफ का यही तो फायदा होता है कि गुंजाइश का पहलू भी निकल आता है, एहतियात का पहलू भी निकल आता है। और कोई सवाल? जामे तौहीद में एडमिशन लेने की तरतीब ये है कि वहां जाएं एडमिशन ले लें, बाहर के लोग हैं वो अंदर आ जाएं फिर ले लें। गूगल पे लिखा होगा ये तरीका एडमिशन का, वो वहां पढ़ लें। उर्दू नहीं जानते तो वो पश्तो में पूछ लें क्या तरीका है, वहां पश्तो भी आती है, जो भी आता है वो गूगल पे सर्च करें। मुझे, मैं मैनेजमेंट में ही हूं ना जामिया की, मैं जामेतुर रशीद का पुराना टीचर हूं, मैनेजमेंट में नहीं हूं, मैनेजमेंट से मेरा ताल्लुक नहीं है। उसकी वजह यह कि मेरा मैनेजमेंट वाला मिजाज ही नहीं है। मुझे एक दफा जामिया वालों ने कहा कि आप एमबीए कर लो, मैंने कहा मैंने अगर एमबीए किया तो चार बीवियों की मैनेजमेंट का तरीका सीखने के लिए मैं एमबीए करूंगा, क्योंकि मुझे मैनेजमेंट से पर्सनली वो है, और वैसे मेरे अंदर सलाहियत, उनको भी बताया कि इस बंदे के अंदर ये डुबो देगा चार दिनों में मदरसा, तो इसलिए मैं पुराना उस्ताद जरूर हूं वहां पे, लेकिन मेरा मैनेजमेंट से ताल्लुक नहीं है। तो इसलिए क्या एडमिशन का तरीका है, एडमिशन के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये गूगल से पूछें, वो मुझसे ज्यादा अच्छा बता देगा जामिया के बारे में। चलो भाई, और कोई? बस काफी हो गया। बस भाई से आखिरी सवाल, सच्ची मुच्ची का आखिरी। कनाडा में कह रहे हैं कादियानी बहुत है, कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ? कादियानियों से बहस हुई? अभी तक तो ऐसा कोई इत्तेफाक मेरा हुआ नहीं। कादियानी तो हर जगह ही है, जर्मनी में सबसे ज्यादा है, कनाडा में भी है, हर जगह ही है। तो वहां बहुत एहतियात से लोगों को चलना पड़ता है। इससे फिर अपने मुल्क की कदर होती है कि जो हमें यहां मजहबी आजादी है, बहरहाल वो दुनिया में नहीं है, इतनी आजादी नहीं है हमें। अच्छा, माशाल्लाह। तो आप कनाडा से कब आए आप? अच्छा, वापस जाएंगे? चलें।